देखिए भाई आगे सबक वल आलमु अल आलमुल मुनादल मबनी यु अल जम्मी अम्मा कौनुहु मुनादन फली अन्नल कलाम फीही व अम्मा कौनुहु मबनी यन अल जम फलिमा युफहमु मिन इख्तियारि फतहिल मुंबी अन जवाज जम्मी फ इन जवाज जम्मति ला यकूनु इल्ला फिल मबनी अल जम। भाई मुनादा की बहस चल रही है, साहिब काफिया ने आपको बतलाया कि मुनादा मुफरद मारिफा हो तो मबनी होगा अलामत रफा पर, या जैदु या जैदानी या जैदूना, ये सब मबनी है जब ये मुनादा मुफरद मारिफा हो। मुफरद होने का क्या माना, यानी मुजाफ या मुशाबेह मुजाफ न हो भाई, और मारिफा हो चाहे कबलन निदा मारिफा हो चाहे बादन निदा मारिफा हो, और अगर मुनादा मुजाफ हो या मुशाबेह मुजाफ हो या नकिरा गैर मुआयन हो तो इस सूरत में वो मंसूब होगा। या अब्दल्लाह, देखो मुजाफ है तो मंसूब है, या तालिअन जबलन मुशाबेह मुजाफ है तो भी मंसूब है, या रजुलन खुज बियदी अंधा किसी गैर मुआयन शख्स को निदा देता है तो ये भी मंसूब है भाई। उसके बाद मुनादा के तवाबिया का बयान शुरू किया था साहिब काफिया ने, मैंने आपको बतलाया था कि तवाबिया का आगे मुस्तकिल बयान भी आ रहा है, लेकिन मुनादा के तवाबिया का हुक्म बाकी तवाबिया से थोड़ा सा मुख्तलिफ था, इसलिए साहिब काफिया मुनादा की बहस में ही उसके तवाबिया को भी जिक्र फरमा रहे हैं भाई। तो सबसे पहले आपको यह बतलाया कि वो मुनादा जो मबनी हो अलामत रफा पर, उसके जो तवाबिया हैं अगर वो मुफरद हो, क्या माना, यानी मुजाफ ना हो बा इजाफत मानवी, तो फिर उनमें रफा भी जायज है और नसब भी जायज है, लेकिन तमाम तवाबिया में नहीं बल्कि चार तवाबिया हैं भाई। एक है ताकीद मानवी, एक है सिफत, एक है अत्फ बयान, और एक वो मातूफ जिस पर हर्फ निदा का दाखिल करना मुमतनेअ है, यानी वो मातूफ व हर्फ जो मुअर्रफ बिल लाम है। तो इसमें रफा पढ़ना भी जायज मुनादा के लफ्जों पर हमल करते हुए, और नसब भी जायज है मुनादा के महल पर हमल करते हुए। तो या ज़ैदुल आकिलु और या ज़ैदुल आकिला दोनों तरह पढ़ना जायज है। और अगर यही मुनादा जो मबनी है अलामत रफा पर, इसके तवाबिया अगर मुफरद न हो बल्कि मुजाफ हो बा इजाफत मानवी, तो फिर उनमें नसब ही पढ़ेंगे, फिर उनमें दो वजह पढ़ना जायज नहीं बल्कि फिर उसमें नसब ही पढ़ेंगे। जैसे या तैमु कुल्लहुम या जैदु जल माली, सूरत समझ में आ गई। जबकि तवाबिया में से बदल और वो मातूफ जिस पर या का दाखिल करना मुमतनेअ नहीं है, यानी वो मुअर्रफ बिल्लाम नहीं है, इनका हुक्म मुस्तकिल मुनादा वाला है। यानी जैसे मुस्तकिल मुनादा मुफरद मारिफा हो तो मबनी अला जम होता है, इसी तरह अगर ये बदल या ऐसा मातूफ जो मुअर्रफ बिल्लाम नहीं, वो भी अगर मुफरद मारिफा हुआ तो मबनी होगा अलामत रफा पर, और अगर वो मुजाफ या मुशाबे मुजाफ या नकेरा गैर मुआयन हुआ तो वो मंसूब होगा जैसे मुनादा मंसूब होता है। फिर उसके बाद इख्तिलाफ जिक्र हुआ था इमाम खलील इब्ने अहमद रहमहुल्ला और कारी अबू अम्र के दरमियान। वो फरमाते हैं वो मातूफ बा हर्फ जिस पर या का दाखिल करना मुमतनेअ है, यानी वो जो मुअर्रफ बिल्लाम है, जैसे या जैदु वल हारिसु, इसके अंदर इमाम खलील रहमहुल्ला फरमाते हैं रफा पसंदीदा है, जबकि कारी अबू अम्र फरमाते हैं इसके अंदर नसब पसंदीदा है, जबकि इमाम मुबर्रिद रहमुल्ला इन दोनों के दरमियान मुहाकमा फरमाते हैं कि वो मातूफ बहर्फ जो मुअर्रफ बिल्लाम है उसके लफ्ज में गौर किया जाएगा, अगर उससे अलिफ्लाम का जुदा करना मुमकिन है तो फिर उसमें रफा पसंदीदा है, यानी वो इमाम खलील रहमुल्ला के मजहब को वहां तरजीह देते हैं, और अगर वो मुअर्रफ बिल्लाम ऐसा है जिससे अलिफ्लाम को जुदा नहीं किया जा सकता, जैसे अन नजम है या अस्साइक है, तो फिर इसमें वो कारी अबू अमर के मजहब को तरजीह देते हैं कि फिर इस सूरत में नसब पढ़ना पसंदीदा। बात समझ में आ गई। तो किस मातूफ की बात हो रही है? जो मुअर्रफ बिल लाम है। इमाम खली रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं इसमें? रफा पसंदीदा। वजह यह कि इमाम खलील फरमाते हैं कि यह जो मातूफ बहर्फ होता है यह मुस्तकिल मुनादा है, लिहाजा इसको भी मबनी अला जम होना चाहिए, लेकिन इस पर हर्फ निदा दाखिल नहीं हो सकता क्योंकि इस पर अलिफ्लाम मौजूद है। तो जब आप इसको मबनी अला जम नहीं बना सकते तो कम अज कम फिर उस जैसा एराब ही दे दो ताकि पता चले कि यह मुस्तकिल मुनादा है। तो या ज़ैदु वल हारिसु इस तरह पढ़ेंगे और यह पसंदीदा है, अगरचे नसब भी वो जायज कहते हैं। जबकि कारी अबू अमर फरमाते हैं कि मातूफ बहर्फ मुस्तकिल मुनादा होता है, लेकिन यहां पर यह जो मातूफ बहर्फ है इस पर अलिफ्लाम दाखिल है तो लिहाजा इसको मुस्तकिल मुनादा बना ही नहीं सकते। जब मुस्तकिल मुनादा बना ही नहीं सकते तो फिर ताबिया वाला हुक्म ही इसको देना पड़ेगा, और मबनी का जो ताबिया होता है वो उसके महल के ताबे होता है, लिहाजा इस पर नसब पड़ेंगे क्योंकि मुनादा महलन मंसूब होता है। या ज़ैदु तकदीर इबारत क्या है? अदऊ ज़ैदन। तो लिहाजा इसका जो ताबिया होगा उस पर भी नसब पढ़ेंगे, तो या ज़ैदु वल हारिसा पढ़ेंगे मुनादा के महल पर हमल करते हुए, क्योंकि इसको मुस्तकिल मुनादा बनाना मुमकिन नहीं। तो इमाम खलील इब्ने अहमद ने माना की तरफ नजर की कि माना के एतबार से मातूफ बहर्फ मुस्तकिल मुनादा है, लिहाजा इसकी सूरत भी मुस्तकिल मुनादा जैसी होनी चाहिए, लिहाजा वल हारिसु पढ़ा जाए। जबकि कारी अबू अमर जो हैं उन्होंने इसके लफ्जों की तरफ नजर की कि लफ्जों के एतबार से तो इसको मुस्तकिल मुनादा बनाना मुमकिन नहीं क्योंकि इस पर अलिफ्लाम है, तो इसको ताबे वाला ही एराब दिया जाएगा, अगरचे रफा भी वो जायज कहते हैं लेकिन पसंदीदा कहते हैं, नसब है भाई। अब आइए आज के सबक पर भाई। कहते हैं वल आलमु अल आलमुल मुनादल मबनी यू अल जम्मी अम्मा कौनुहु मुनादन फली अन्नल कलाम फीह। पहले मतन मतन देख लें जी। कहते हैं वल अलमुल मौसूफु बी इबनिन मुजाफन इला अलमिन आखरा युख्तारु फतहुहु। याद रखो अरबी जुबान में बेटे के नाम के साथ बाप के नाम को अक्सर जिक्र किया जाता है। तो जैद है मसलन, वो अमर का बेटा है तो जैद उबनु अमरिन, तो बेटे के नाम के साथ बाप के नाम को कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो इबन का लफ्ज आता है याद रखो ये माकबल के लिए सिफत बनता है। माकबल पर अगर रफा हो तो इस इबन पर लफ्ज पर भी रफा आएगा, अगर माकबल पर नसब या जर है तो इस इबन पर भी नसब या जर आएगा। तो इबन का लफ्ज माकबल के लिए सिफत बनता है और मा बाद के लिए यह इबन का लफ्ज मुजाफ बनता है। तो इबन के मा बाद जो लफ्ज आएगा वो मजरूर होगा मुजाफ इले होने की वजह से। तो कैसे पढ़ेंगे? ज़ैदुबनु अमरिन। ज़ैदुबनु, देखो जैद मरफू है तो इबनु ये भी मरफू मैंने पढ़ा, ये उसकी सिफत है, और अमरिन मजरूर है मुजाफ इले है। तो कैसे पढ़ेंगे? ज़ैदुबनु अमरिन। और अगर जैद पर नसब हो तो कैसे पढ़ेंगे? ज़ैदबना आमरीन। और अगर जैद पर जार हो तो कैसे पढ़ेंगे? ज़ैदिबनी आमरीन। सूरत समझ में आ गई? तो याद रखो अगर मुनादा ऐसा आलम हो जिसकी सिफत इबन का लफ्ज आ रहा हो और इबन आगे दूसरे आलम की तरफ मुजाफ हो रहा हो तो इसके अंदर फतहा पसंदीदा है। इस किस्म के मुनादा में फतहा, मसलन जैद उबनो आमरीन। अब इस जैद को मैं निदा देना चाहता हूं और इसको इसकी सिफत में इबन को लाना चाहता हूं और इबन के बाद एक और आलम है उसकी तरफ इसकी इजाफत हो रही है, तवज्जो है। तो देखो असल में तो या जैदु मुनादा मुफरद है और मारिफा है, मुफरद है यानी मुजाफ या मुशाबे मुजाफ नहीं, तो यह मबनी होगा अलामत रफा पर। या ज़ैदु और आगे इबना अमरिन, ये इबना अमरिन मुजाफ मुजाफिले मिलकर सिफत बन रहे हैं किसके लिए? जैद के लिए, तवज्जो है। और आपने पढ़ा कि मुनादा मुफरद मारिफा के तवाबे अगर मुजाफ हों तो उन पर क्या पढ़ा जाता है? नसब। अभी बताया पिछले सबक में वल मुजाफतु तुन सबु, कि अगर ताबिया मुजाफ हो तो उस पर नसब, तो कैसे पढ़ना चाहिए? या जैदुबन आमरीन इबन आमरीन, ये इस पर इबन पर नसब पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? या जैदुबन आमरीन। या जैदु क्यों पढ़ा? क्योंकि ये मुनादा मुफरद मारिफा है, यह मबनी है अलामत रफा पर। और इबन आमरीन क्यों पढ़ा? क्योंकि ये इसका ताबिया है, ये इसकी सिफत है, और जब सिफत मुजाफ हो तो उसमें क्या पढ़ते हैं? नसब। वैसे सिफत आए तो उसमें तो रफा भी जायज, नसब भी जायज, दोनों पढ़ते हैं, या जैदुल आकिलु और या जैदुल आकिला। लेकिन अगर मुजाफ हो तो फिर नसब ही पढ़ना है, तो या जैदुबन आमरीन। तवज्जो है? तो देखो ये मुनादा कौन है? मुनादा जैद आलम है, और इसके इसकी सिफत इबन आ रही है, और इबन आगे मुजाफ हो रहा है एक और आलम की तरफ। तो इस सूरत में याद रखो, ये जो मुनादा है या जैदु, इस पर फतहा पढ़ना पसंदीदा है, इस पर भी जबर पढ़ें, फतहा पढ़ें, या जैदा बना आमरीन। तो यूं भी आप पढ़ सकते हैं, या जैदु बना आमरीन, जैद को मबनी अल जम पढ़े, लेकिन फतहा पढ़ना इस पर पसंदीदा है। बात समझ में आ गई? तो कैसे पढ़ेंगे? या जैदा बना आमरीन। और दूसरी सूरत क्या है? या जैदु बना आमरीन। सूरत समझ में आ गए? तो याद रखो, इस किस्म का जो मुनादा होगा उसमें फतहा पसंदीदा है, और उसमें चार शर्तें हैं भाई, चार शर्तें, कि वो मुनादा आलम होना चाहिए। या जैदु, ये जैद क्या है? आलम है। दूसरी शर्त, इसकी सिफत इबन आनी चाहिए, इबन आनी चाहिए। तीसरी शर्त, ये जैद और इबन के दरमियान कोई वासिता नहीं होना चाहिए। भाई बाज़ औकात मुनादा की सिफत ले आते हैं या नहीं? या जैदुल आकिलु और आगे फिर इबन अमरिन, या जैदुल आकिलु, पहले जैद की सिफत ले आए फिर आगे इबन अमरिन दूसरी सिफत ले आए। तवज्जो है? लेकिन दरमियान में वासिता नहीं होना चाहिए। और चौथी शर्त यह है कि इबन के बाद एक और आलम हो जो मुजाफिले बन रहा, यूं कहें, और इबन के बाद एक और आलम होना चाहिए जिसकी तरफ वो मुजाफ हो रहा है। तो कितनी शर्तें हैं? चार शर्तें हैं। पहली शर्त क्या? कि मुनादा आलम हो। दूसरी शर्त क्या? सिफत उसकी इबन आए। तीसरी शर्त क्या? कि उस आलम और इबन के दरमियान कोई वासिता, कोई फसल ना हो, कोई जुदाई ना हो, इत्तेसाल हो दोनों में। और चौथी शर्त क्या? कि इबन के बाद एक और आलम आना चाहिए। या जैद बना अमरिन, देखो जैद आलम है, और इसके बाद इसकी सिफत क्या आ रही है? इबन। दूसरी शर्त भी पूरी, दरमियान में कोई सिफत वगैरह कोई वासिता भी नहीं, तीसरी शर्त भी पूरी, और चौथी शर्त भी पूरी है कि इबन के बाद एक और आलम है। तो कितनी शर्तें? चार शर्तें। फिर दोहरा लो, पहली शर्त क्या? कि मुनादा आलम हो। दूसरी शर्त उसकी सिफत इबन हो। तीसरी शर्त दरमियान में कोई वासिता, कोई सिफत वगैरह, कोई फसल ना हो। और चौथी शर्त क्या? कि इबन मुजाफ हो एक और आलम की तरफ। तो इस किस्म के नाम अरबी जुबान में कसीरुल इस्तेमाल हैं, और कसरत खिफत का तकाजा करती है कि लफ्ज को क्या होना चाहिए? खफीफ होना चाहिए, जुबान पर जल्दी से अदा हो जाए। और आप खुद बताइए, या जैदु बना आमरीन पढ़ना आसान है या जैदा बना आमरीन पढ़ना आसान है? या जैदा बना आमरीन, देखो बिल्कुल साफ तलफुज से ही पता चल रहा है। तो चूंकि फतहा अखफुल हरकत है, सबसे हल्की हरकत है जो आसानी से जुबान से अदा हो जाती है, लिहाजा इस किस्म के मुनादा पर फतहा पढ़ना पसंदीदा है। बात समझ में आ गई? तो लफ्जों के अंदर भी तख़फीफ की, तलफ़ुज़ के अंदर भी तख़फीफ की, जम्मा की जगह क्या पसंदीदा? फतहा पसंदीदा। और याद रखो, किताबत के अंदर भी तख़फीफ है यहां पर, कि ये जो इबन का हमजा है ये नहीं लिखेंगे, ये इबन का जो हमजा है हमजा वसली है, और आप जानते हैं हमजा वसल दरमियान इबारत में गिर जाता है, उसको पढ़ा नहीं जाता। जैसे इज रिब, देखो इज रिब, इसका हमजा वसली है, दरमियान इबारत में ये गिर जाएगा। मसलन मैं कहता हूं कुल तू लहुज रिब जैदन, कुल तू लहुज रिब जैदन, देखो इज रिब का हमजा गिर गया, तो हमजा वसली दरमियान इबारत में गिर जाता है, लेकिन तलफुज से गिरता है, लिखने से नहीं गिरता। लिखना पड़ेगा आपको किताबत में, लेकिन यहां पर ये जो इबन का हमजा है, ये इबन का हमजा किताबत से भी गिरा देंगे, लिखेंगे भी नहीं। तो कैसे पढ़ेंगे, या जैदा बन आमरीन, ये इस तरह पढ़ना पसंदीदा है भाई। और याद रखो सिर्फ ये यहीं पर नहीं है इस मुनादा के अंदर इस तरह हो, बल्कि अरबी जुबान में जहां भी इस तरह इबन का लफ्ज दो अलमैन के दरमियान आ जाए, अलमैन दो अलमैन के दरमियान, तो वहां पर माकबल वाले लफ्ज से तनवीन भी गिर जाती है और इबन का हमजा भी वहां गिर जाता है। मसलन जैद इब्न आमरीन, जैद इब्न मसलन मैं आपसे कहता हूं जाअनी, मेरे पास आया था जैद इब्न आमरीन, कौन आया, जैद इब्न अमर आया। अब देखो जरा एराब पे गौर करो, जा फेल नोन विकाया, या जमीर मंसूब महलन मफूल बिही, जैदन मरफू लफजन मौसूफ, क्योंकि आगे इबन का लफ सिफत आ रही है, तो जैदन मरफू लफजन मौसूफ, इबनो मरफू लफजन मुजाफ, मरफू क्यों, क्योंकि यह सिफत है और सिफत का वही अराब होता है जो मौसूफ का, और आमरीन मजरूर लफजन मुजाफिल है, तवज्जो है। अब देखो जैदन पर क्या इराब पढ़ा आपने, जैदन पर रफा है, रफा पढ़ के दिखाओ जरा जैदन पर, जैदन देखा आखिर में तनवीन भी आ रही है, और तनवीन किस चीज का नाम है, नूने साकिन का नाम है, आगे इबन का लफ्ज है और इबन का हमजा वसली तो गिर गया, अब बाबी साकिन और माकबल में जैदन का नून भी साकिन, तो इज्तिमाई साकिनैन आया, और अगर अव्वल हरफे मद्दा हो उसको गिराते हैं, लेकिन यहां तो अव्वल क्या है, नूने तनवीन है, तो फिर इस सूरत में हरकत देंगे अव्वल वाले को, और अस्सा की नुजा हुर्री का हुर्री का बिल कसर, तो कैसे पढ़ना चाहिए, जैदो ने बनो, नून के नीचे जेर पढ़ दें, जैदो ने बनो आमरीन, जा आनी जैदो ने बनो आमरीन। लेकिन याद रखो ये अरबी में ये इबन इस तरह कसीरुल इस्तेमाल है, दो आलमैन के दरमियान इस्तेमाल होता है, और कसरत खिफत का तकाजा करती है, लिहाजा इस सूरत में पहले वाले आलम से तनवीन गिरा देते हैं, तो जैदुन से तनवीन गिर गई, क्या गिर गई, तनवीन गिर गई, सिर्फ जैदू रह गया और आगे इबन आया, अब मिलाएं जरा तनवीन के बगैर मिलाएं, जैदू बनो आमरीन, वैसे जाब्ते के मुताबिक क्या था, जैदो ने बनो आमरो, लेकिन अब तनवीन गिर गई, अब कैसे पढ़ेंगे, जैदो बनो आमरीन, तो ये तख़फीफ के तौर पर माकबल वाले आलम से तनवीन गिरा देते हैं जब भी इबन आए दो आलमैन के दरमियान। वहां भी यही चार शर्तें हैं, इबन का लफ्ज किस में आना चाहिए, दो आलमैन में, यूं कहें इबन से माकबल क्या हो, आलम हो, और उसकी सिफत क्या है, इबन आए, और दरमियान में कोई वासिता ना हो, और इबन के बाद एक और आलम आना चाहिए, और वो मुतनासिलैन हो, यानी बाप बेटे हो आपस में, माकबल और मां बाद वाले का ताल्लुक क्या हो, बाप बेटे का हो, कभी दादा पर दादा की तरफ भी निस्बत कर देते हैं अरबी जुबान में। मसन आमर जो है जैद के बाप का नाम नहीं है, जैद के दादा या परदादा का नाम है, और दादा परदादा मशहूर ज्यादा है, तो बाद का दादा परदादा की तरफ निस्बत कर देते हैं। अब जैद इब्न आमरीन तवज्जो है, लेकिन अगर दादा पर दादा हो फिर तनवीन नहीं गिरेगी, फिर तनवीन नहीं गिरेगी, बात समझ में आ गई। ये तनवीन कब गिरेगी, जब ताल्लुक क्या हो दोनों का आपस में, बाप बेटे वाला हो, दादा पर दादा वाला ना हो भाई, तो उस सूरत में तनवीन भी गिराते हैं और इबन का हमजा भी गिरा देते हैं, वो भी नहीं लिखते, बात समझ में आ गई। ये चार शर्तें, तो मुनादा के अंदर भी जब मुनादा अगर आलम हो और उसकी सिफत इबन आए और दरमियान में कोई वासिता ना हो और आगे एक और आलम आए, तो फिर इस सूरत में इस किस्म के मुनादा में क्या पढ़ना पसंदीदा, फतहा पढ़ना पसंदीदा है, अलबत्ता जम्मा भी पढ़ सकते हैं, बात समझ में आ गई। अब देखिए भाई किताब पर मतन मतन देखिए, कहते हैं वल आलमुल मौसूफ बी इबनिन, और वो आलम जो मौसूफ हो इबन के साथ, भाई इबन का हमजा वसली है, दरमियान इबारत में गिर जाता है, लेकिन यहां पर जो आया ना बी इबनिन, यहां हमजा वसल को नहीं गिराना, क्योंकि यहां इबन से लफ्ज इबन मुराद है, गोया वो जो अरबी इबारतों में इबन का लफ्ज आता है उसका नाम ही क्या रख दिया, इबन रख दिया तो अब यह अलम के दर्जे में है, और अलम जब यह अलम है तो अब इसका हमजा कतई बन चुका है, अब इसको नहीं गिराएंगे। तो कहते हैं वल आलमुल मौसूफ बि इबनिन, और वो आलम जो मौसूफ हो किसके साथ, इबन के साथ, मुजाफन इला आलमिन आखरा, इस हाल में कि वो इबन का लफ्ज मुजाफ हो इला आलमिन आखरा किसी दूसरे आलम की तरफ, युख्तारु फतहु, तो उसमें फतहा पसंदीदा है। तवज्जो है, फतहा पसंदीदा है। जाब्ता समझ में आ गया। अब देखिए शरा के साथ इस सारे को, तो कहते हैं वल आलमु अयल आलमुल मुनादल मबनी यु अल जम। भाई मतन में आया वल आलमु, और वो आलम जो मौसूफ हो इबन के साथ। आगे शारह जामी फरमा रहे हैं कि आलम से हर आलम नहीं मुराद, अयल आलमुल मुनादल मबनी यु अल जम, वो आलम मुराद है जो मुनादा हो और मबनी हो जम्मा पर। तवज्जो है, वो आलम मुराद है। तो मतन में आया था अल आलम, और साहिब जामी ने दो शर्तें साथ, दो सिफतें बढ़ा दी कि वो आलम क्या होना चाहिए, मुनादा और मबनी हो जम्मा पर। तो सवाल पैदा हुआ कि ऐ साहिब जामी, आपने ये मुनादा की कैद क्यों साथ बढ़ा दी, और आपने मबनी अल जम की कैद क्यों साथ बढ़ा दी। तो साहिब जामी आपको बतलाएंगे कि आलम से हर आलम नहीं मुराद, मुनादा मुराद है। भाई क्यों? वजह यह कि कहते हैं कि बहस मुनादा के बारे में चल रही है, बात किसकी चल रही है, मुनादा की चल रही है, तो हर आलम की बात नहीं हो रही, बल्कि उस आलम की बात हो रही है जो क्या वाक हो, मुनादा वाक हो। और कहा कि वो मबनी हो जम्मा पर, वो आलम क्या हो, मबनी हो जम्मा पर। यह मबनी हो जम्मा पर ये कैद आपने क्यों बढ़ा दी, कि आपको बतलाएंगे साहिब जामी कि देखो आगे आया मतन में साहिब काफिया क्या फरमा रहे, युख्तारु फतहु, कि इस किस्म के आलम में फतहा पसंदीदा है। मालूम हो फतहा वाजिब नहीं है, फतहा वाजिब नहीं, फतहा पसंदीदा है। जब फतहा पसंदीदा है मालूम हुआ इसमें जम्मा भी जायज है, इसमें जम्मा भी जायज है। अगर फतहा वाजिब होता तो फिर युख्तारु न फरमाते, बल्कि वाजिब का लफ्ज लेकर आते कि इसके अंदर फतहा वाजिब है। तो फतहा का पसंदीदा होना बतला रहा है कि उसके अंदर जम्मा भी जायज है। भाई देखिए, भाई कहते हैं वल आलम अयल आलमुल मुनादल मबनी यो अल जमी, वो आलम जो मुनादा हो मबनी हो जम्मा पर। कहते हैं अम्मा कौनुहु मुनादन, बाकी उस आलम का मुनादा होना, कहते हैं फली अन्नल कलाम फीही, इसलिए क्योंकि कलाम जो है मुनादा के बारे में है। भाई ये कलाम किसके बारे में चल रहा है, मुनादा के बारे में, तो ये आहार आलम की बात नहीं हो रही। कहते हैं वह अम्मा को, और बाकी आपने क्या कहा कि मबनी अल जम की कैद हमने क्यों बढ़ाई, कहते हैं वह अम्मा कौन हूं मबनीयन अल जमी, और बाकी इस आलम का मबनी अल जम होना, कहते हैं फली मा युफ हमो, बस उस वजह से जो समझ में आ रहा है, मिन इख्तियारी फतही के हाजमी, उस आलम को राजे करें वो जो मुनादा है, बस उस वजह से जो समझ में आता है, मिन इख्तियारी फतही, उस आलम मुनादा के फतहा का मुख्तार होना, उस आलम मुनादा के फतहा के मुख्तार होने से जो समझ में आ रहा है। आगे अलमुंबी, ये सिफत है इख्तियारी फतही की, कि फतहा का मुख्तार होना, अलमुंबी अंबा अयुंबी का माना खबर देना, इत्तिला देना, उस आलम के फतहा का मुख्तार होना, अलमुंबी अन जवाज़ी जम्मी, जो खबर दे रहा है जम्मा के जवाज का। जब फतहा मुख्तार है, मालूम हो फतहा वाजिब नहीं, ये किस चीज की खबर दे रहा है, जम्मा के जवाज, मालूम हुआ जम्मा भी जायज है, मालूम हुआ जम्मा भी जायज है। इस पर आपके जहनों में इश्काल आएगा कि भाई फतहा का मुख्तार होना जम्मा के जवाज की खबर तो नहीं देता। भाई मैंने कहा इस आलम के अंदर फतहा मुख्तार है, इस आलम के अंदर फतहा, इससे तो यह पता चला कि फतहा के अलावा कोई और हरकत पढ़ना भी जायज है जी। सिर्फ जम्मे का तो पता नहीं, जम्मे के जवाज का तो नहीं पता चला यहां से जी। सिर्फ क्या पता चला, फतहा मुख्तार है, मालूम हुआ और कोई हरकत भी इसमें जायज है। लेकिन आपने क्या कहा, यह नहीं कहा कि कोई और हरकत भी जायज है, बल्कि आपने सीधा सीधा क्या कहा कि फतहा का मुख्तार होना क्या बतला रहा है, जम्मा भी जायज। भाई जम्मा के जायज होने का तो पता नहीं चल रहा, बात समझ भी आ रही है कि नहीं? क्या इन्होंने कहा फतहा मुख्तार है, तो फतहा के मुख्तार होने से पता चला कोई और हरकत भी जायज है। लेकिन आपने ये नहीं कहा कोई और हरकत भी जायज है, आपने सीधा सीधा क्या कह दिया, जम्मा भी जायज है। भाई जम्मा के जायज होने का तो पता नहीं चल रहा, यह पता चल रहा है कोई और हरकत भी जायज है। तो याद रखना वजह उसकी ये कि मैंने आपको बतलाया था कि तीन तरह के नाम हैं, जम्मुन फतहुन कसरुन, ये खास है मबनी के साथ बगैर गोलता के, जम्मुन फतहुन कसरुन, और रफ़ुन नस्बुन जर्रुन, ये खास है मुअरब के साथ, और जम्मतुन फतहतुन कसरतुन, ये गोलता भी साथ जोड़ दे तो ये मुअरब और मबनी दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहां क्या आया, युख्तारु फतहुहु, उसके अंदर फतहा मुख्तार है। फतहा बतला रहा है कि मुनादा मबनी है। फतहा किस में बोलते हैं, मबनी में, मालूम हुआ मुनादा मबनी है। और मुनादा के अंदर आपने क्या पढ़ा है, मुनादा जब मुफरद मारिफा हो तब वो मबनी होता है, और जब मुजाफ या मुशाबे मुजाफ या नकरे गैर मुआयन हो तो बाकी तमाम सूरतों में वो मंसूब होता है, मुअरब होता है। तो फतहुहु से इतना तो पता चल गया कि मुनादा मबनी ही है। मुनादा क्या है, हां इसमें फतहा पसंदीदा है और है मबनी। तो बाकी मबनी वाली और कौन सी सूरत रह गई मुनादा में, मबनी अला जम के अलावा तो और कोई सूरत है ही नहीं मुनादा के अंदर जिसमें वो मबनी हो। बात समझ में आ गई, तवज्जो है? तो लिहाजा फतहा का मुख्तार होने से किस क्या पता चला कि मुनादा मबनी है, अलबत्ता इसमें फतहा पसंदीदा है। तो दूसरी हरकत उस मुनादा मबनी में फिर कौन सी है, सिर्फ जम्मा ही आता है और कोई हरकत नहीं आती। भाई तो कहते हैं वह अम्मा कौनुहु मबनियन अला जम्मी, और बाकी उस आलम का मबनी अला जम होना, फलिमा युफहमु मिन इख्तियारी फतहिही, बस उस वजह से जो मफहूम होता है, जो बात समझ में आती है, मीन इख्तियारी फतहिही, उस आलम मुनादा के फतहा के मुख्तार होने से, उस आलम मुनादा के फतहा के मुख्तार होने से, अलमुंबी अन जवाज़ी ज़म्मिही, जो उसके जम्मा के जवाज की खबर दे रहा है, उसके फतहा का मुख्तार होना जो कि खबर दे रहा है जम्मा के जवाज की, उससे मफहूम होता है। अच्छा मालूम हुआ फतहा पसंदीदा है तो जम्मा जायज है, और जम्मा किस मुनादा में जायज है, वही जो मबनी अला जम है, और तो किसी मुनादा में जम्मा जायज ही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं फइन्ना जवाज़ा जम्मति ला यकूनु इल्ला फिल मबनी अला जम्मी, तो जम्मा का जायज होना यह नहीं है मगर उस मुनादा के अंदर जो मबनी हो जम्मा पर। इसलिए हमने भी क्या कैद लगा दी कि वह आलम जो मुनादा हो और मबनी हो जम्मा पर। अल मौसूफ भी इबन, वो आलम जो मौसूफ हो रहा हो इबन के लफ्ज के साथ। याद रखो इबन का भी यही हुक्म है और इबनातुन यानी मुअन्नस का भी यही हुक्म है, इबनुन और इबनातुन, बिनतुन का यह हुक्म नहीं है। तवज्जो है, इबनुन और इबनातुन दोनों का यह हुक्म है। तो कहते हैं अल मौसूफ भी इबनिन, वो आलम जो मौसूफ हो इबन के साथ, मुजर्रदिन अनि ताई, वो इबन का लफ्ज क्या हो, ता से खाली हो यानी मुजक्कर हो, औ मलहूकिन बिहा, या उसके साथ ता मिलाई गई हो, आनी इबनतन यानी कौन सा लफ्ज हो, इबनतन हो, यानी इबन या इबनतन के साथ वो आलम मौसूफ हो रहा हो। बात समझ में आ गई। और बिला तखल्लुली वासितातिन, बिला तखल्लुली वासितातिन बैनल इब्नि व मौसूफिही, और बगैर तखल्लुल वासिता के, तखल्लुल का माना बीच में आना, बगैर किसी वासिता के बीच में आने के, यानी कोई वासिता बीच में ना आए, बैनल इब्नि व मौसूफिही, लफ्ज इबन और उसके मौसूफ के दरमियान, तवज्जो है, लफ्ज इबन और उसके मौसूफ के दरमियान कोई वासिता बीच में ना आए, कमा हुअल मुतबादिरु इलल फहमी, जैसे कि यह बात मुतबादिर होती है फहम की तरफ। मुतबादिर का माना एक चीज का सबकत करना, एक बात एक लफ्ज आप बोलें तो जो माना फौरी जहन में आता है उसको कहते हैं कि मुतबादिर, भाई जहन की तरफ एक बात सबकत करती है। तवज्जो है भाई, बात यह चल रही है कि मुनादा अगर ऐसा अलम है जो मौसूफ हो रहा है इबन के साथ, किसके साथ, और दरमियान में कोई वासिता ना हो, भाई ये दरमियान में वासिता ना हो, ये तो साहिब काफिया ने कहीं नहीं जिक्र किया। मैंने कितनी शर्तें गिनवाई थी, चार। पहली शर्त क्या कि मुनादा अलम हो, दूसरी शर्त क्या सिफत उसकी इबन आए, तीसरी शर्त क्या दरमियान में कोई वासिता ना हो, भाई ये वासिता दरमियान में ना हो, ये तो साहिब काफिया ने जिक्र नहीं किया, ये आपने कहां से जिक्र कर दिया। तो साहिब जामी बतला रहे कि भाई जब कह दिया कि वो अलम मौसूफ हो रहा हो इबन के साथ, इससे फौरन जहन में यही समझ में आता है कि दरमियान में कोई वासिता नहीं होगा, बगैर वासिते के मौसूफ हो रहा होगा। तवज्जो है, जैसे देखो मसलन एक मरीज है, बीमार है, वो चल फिर नहीं सकता, आपसे किसने पूछा कि हां भाई अब जैद चल सकता है या नहीं, वो बीमार था, आप उसको कहते हैं हां अब वो चंद कदम चल लेता है, मालूम हुआ ये कियाम जैद की सिफत है। और क्या माना समझे आप, जैद कोई लाठी पकड़ के चल लेता है या दीवार के सहारे तीन चार कदम चल लेता है, आप क्या समझते हैं इससे। भाई जब मैं कहूंगा एक मरीज अब कुछ कदम चल लेता है, क्या माना होता है, मालूम हुआ कि वो बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी वास्ते के खुद दो चार कदम चल लेता है। भाई सहारा लेकर तो बड़ा बीमार आदमी भी सहारे के साथ कुछ ना कुछ चल लेता है, लेकिन जब जिक्र किया जाता है कि वो अब बेहतर है, अब चंद कदम वो चल लेता है, माना क्या होता है कि बगैर किसी सहारे और बगैर किसी वास्ते के चल लेता है। अगर सहारा हो फिर वो बाकायदा आप जिक्र भी करते हैं कि आप मसलन आपसे कोई पूछा जैद चल सकता है या नहीं, तो आप उसको कहते हैं हां कुछ सहारा लेके दो तीन कदम चल लेता है। देखा, जब सहारा होगा तो आप उसको जिक्र भी करेंगे बाकायदा। बात समझ में आ गई। तो लिहाजा यहां पर जब यह कहा कि वह अलम मौसूफ हो इबन के साथ, मालूम हुआ दरमियान में कोई वासिता वगैरह नहीं, जैसे वो जैद के लिए चलना जैद की सिफत थी बगैर किसी वासिते के, दरमियान में कोई वास्ता और सहारा नहीं था। तो यहां पर भी जब क्या कहा वह अलम मौसूफ हो किसके साथ, इबन के साथ, तो क्या बात समझ में आई कि बगैर वास्ते के वो मौसूफ हो रहा हो इबन के साथ, दरमियान में कोई वासिता और फसल न हो। गई तो कहते हैं बिला तखल्लुली वासिततिम बैनल इबनी व मौसूफी ही, बगैर इसके कि कोई वासिता दरमियान में आए उस इबन और उसके मौसूफ के दरमियान, कमा हुवल मुतबादिरु इलल फहमी, जैसे कि यह बात मुतबादिर होती है फहम की तरफ, यानी यह बात सबकत करती है जहन की तरफ, जहन में फौरन यही बात आती है, फया खुरुज अनहु मिसलु या जैदु ज़रीफु बिन अमरिन, लिहाजा इससे इस तरह की मिसालें निकल गईं। इस मिसाल पे नजर रखो, या जैदु, ये मुनादा मुफरद मारिफा है, मबनी है अलामत रफा पर, और अज़रीफ उसकी सिफत है, और आपने पढ़ा कि वो मुनादा जो मबनी हो अलामत रफा पर, उसकी सिफत अगर मुफरद आए तो उसमें रफा भी जायज और नसब भी, या जैदुल आकिलु और या जैदुल आकिला दोनों जायज। तो यहां भी इसी तरह है, या जैदुज़रीफु और या जैदुज़रीफा दोनों तरह पढ़ सकते हैं। और आगे इबन अमरिन, ये दूसरी सिफत आ गई, इबन माकबल के लिए क्या बनता है सिफत, तो ये जैद की दूसरी सिफत आ गई, और ये इबन मुजाफ है अमर की तरफ, और इन्होंने बताया था वल मुजाफतु तुनसबु, अगर तवाबे मुजाफ हो रहे हो तो उनमें क्या पढ़ेंगे नसब। मालूम हुआ अज़रीफु अज़रीफा इसको दोनों तरह पढ़ सकते हैं, लेकिन इबन अमरीन इस पर नसब ही पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे, या जैदु ज़रीफु बिन अमरीन, और चाहे तो ज़रीफ पर नसब पढ़ें, या जैदु ज़रीफा बिन अमरीन, सूरत समझ में आ गई। हां तो ये मिसाल निकल गई, इस जैद के अंदर फतहा नहीं पढ़ सकते भाई, क्यों, क्योंकि जैद और इबन के दरमियान अज़रीफ का वासिता आ गया भाई। तवज्जो है। अच्छा अब यहां याद रखो भाई, ऊपर इबारत आई अल मौसूफु बि इबनिन मुजर्रदिन अनी ताई औ मलहूकिन बिहा, भाई आपकी किताबों में मुजर्रदिन के नीचे तनवीन है और मलहूकिन के नीचे भी तनवीन है, याद रखो ये किताबत की गलती है भाई। ये इबनिन को मौसूफ बनाया गया और मुजर्रदीन और मलहूकिन को उसकी सिफत, और मौसूफ सिफत का एराब एक होता है, लेकिन ये दोनों सिफत नहीं बन सकते भाई, इसलिए क्योंकि इबन बोलकर इबन का लफ्ज मुराद है। जब लफ्ज बोलकर लफ्ज मुराद हो तो वह मारिफा होता है भाई, और मौसूफ मारिफा हो तो सिफत भी क्या होती है, मारिफा होती है। लेकिन यहां इबनीन यह मौसूफ तो मारिफा है, ये हाजा लफ्ज की तावील में है या ये आलम के दर्जे में है। और मुजर्रदीन आनी ताई, देखो ये तो नकेरा है, मुजर्रदीन देखो इस पर कोई अलिफ लाम है नहीं, और इसी तरह मलहूकिन बिहा इस पर भी कोई अलिफ लाम नहीं, तो ये सिफत तो बन ही नहीं सकते भाई। तो मैंने जामी के कई नुस्खों में देखा भाई, सब में इसी तरह है। हां दो नुस्खे मुझे मिले भाई जिनमें सही इबारत थी, एक जामी की शरह है महरम आफंदी, अरबी शरह है मुख्तसर, उसके अंदर यहां है मुजर्रदन अनी ताई और मलहूकन बिहा, यानी मुजर्रदन मंसूब है और मलहूकन बिहा भी क्या है मंसूब, इसको हाल बनाया गया है इबन से इसको, और हाल बनाना ठीक है, सिफत तो नहीं बन सकती क्योंकि मौसूफ सिफत में मुताबकत नहीं है, मौसूफ मारिफा है और सिफत नकेरा, तो हाल बन सकता है। तो महरम आफंदी के अंदर यहां ये मंसूब हैं और इनको हाल बनाया गया है। इसी तरह जामी का एक और नुस्खा मुझे मिला भाई, जो हवाशिय शौकत अफंदी, हवाशिय शौकत अफंदी आला शरह जामी के नाम से है, और उसके अंदर भी यही इबारत, इसमें भी मुजर्रदन अनी ताई औ मलहूकन बिहा है, यानी उसमें भी हाल बनाया गया है। बात समझ में आ गई कि वो आलम मौसूफ हो इबन के साथ, मुजर्रदन अनी ताई इस हाल में कि इबन का लफ्ज़ ता से खाली हो, औ मलहूकन बिहा या इस हाल में कि इबन के लफ्ज़ के साथ ता मिलाई गई हो, आनी इबनतन यानी इबनतुन का लफ्ज़ हो। बात समझ में आ गई, आगे देखिए भाई, कहते हैं मुजाफन ऐ हाल कौन ज़ालिकल इब्नि मुजाफन, मुजाफन की तरकीब बतला रहे हैं कि यह मंसूब क्यों है। कहते हैं ऐ हाल कौन ज़ालिकल इब्नि मुजाफन, क्या बतलाना चाहते हैं कि यह मुजाफन हाल वाक हो रहा है लफ्ज़ इबन से, इस हाल में कि वह इबन क्या हो मुजाफ हो। ऐ हाल कौन ज़ालिकल इब्नि मुजाफन, इस हाल में कि वह इबन जो है मुजाफ हो। देखो ये जितनी जगह इबन का लफ्ज आ रहा है लफ्ज बोलकर लफ्ज मुराद है, लिहाजा ये हमजा गिराना नहीं है भाई, इसको पढ़ना है। इस हाल में कि वो इबन का लफ्ज मुजाफ हो, इला आलमीन आखरा एक दूसरे आलम की तरफ, फकुल्लु आलमी यकूनु कज़ालिका पस हर वो आलम जो इस तरह हो, यजूजु फीहि ज़म्म तो उसके अंदर जम्मा जायज है, उसके अंदर जम्मा जायज है। कमा अरफ्ता मिन क़ाइदति बिना इल मुफ़रद अलामा युरफ़ऊ बिही, कमा अरफ्ता जैसे कि आपने जान लिया, मिन क़ाइदति वो जो कायदा है बिना इल मुफ़रदी कि मुनादा मुफ़रद मारिफा जो है वो मबनी होता है अलामा युरफ़ऊ बिही उस अलामत पर जिस पर उसको रफा दिया जाता है, वो जो आपने पढ़ा था कि मुनादा मुफ़रद मारिफा हो तो मबनी होता है अलामत रफा पर, तो या ज़ैदुबना आमरीन ये जैद भी क्या है मुनादा है मुफरद है मारिफा है, तो ये भी क्या है मबनी अला जम, तो इसमें जम्मा भी जायज है भाई। तो कहते हैं फकुल्लु आलमी यकूनु कज़ालिक पस हर वो आलम जो इस तरह हो, यजूजु फीहि जम तो उसके अंदर जम्मा जायज है। कमा अरफ्ता मिन क़ाइदति बिना इल मुफ़रदि अला मा युरफ़ऊ बिही, जैसे कि आपने जान लिया उस ज़ाबते से उस कायदे से उस कानून से कि मुनादा मुफ़रद जो होता है वो अलामत रफा पर मबनी होता है, उससे आपने जान लिया कि उसमें जम्मा जायज है। लाकिन युख्तारु फतहु, लेकिन इसके अंदर फतहा पसंदीदा है, लिकसरती वुकूइल मुनादल जामिई लिहाज़िही सिफाती, इसलिए क्योंकि कसरत के साथ वाक़े होता है इस तरह का मुनादा, अल जामिई लिहाज़िही सिफाती जो इन सिफात को जामिअ हो, जिसमें ये सारी सिफतें क्या हो जमा हो। कौन सी सिफतें? वही चार सिफतें जो मैंने जिक्र कर दी कि वह आलम क्या हो मुनादा हो, दूसरी उसकी सिफत इबन आए, तीसरी शर्त दरमियान में कोई इबन और मौसूफ के दरमियान कोई वासिता ना हो, और चौथी शर्त क्या कि वो इबन आगे मुजाफ हो एक और आलम की तरफ। तो कहते हैं लिकसरती वकूल मुनादल जामिया लिहादी सिफाती, इसलिए क्योंकि इस किस्म की सिफात का जामिया मुनादा अरबी जुबान में कसरत से वाकई होता है। वल कसरत मुनासिबतुल तखफीफ, और कसरत जो है वो तखफीफ के मुनासिब है भाई, जो चीज कसीरुल इस्तेमाल हो उसमें तखफीफ होनी चाहिए। फखफफूहु बिल फतहती, लिहाजा अरबों में इसको खफीफ बनाया बिल फतहती, किसके जरिए, फतहा के जरिए। अल्लती हिया हरकतुहुल असलियतु, वो फतहा जो इसकी असली हरकत है, लिहाजा अरबों ने इसको खफीफ बनाया। तवज्जो है भाई, इधर देखिए इन्होंने क्या कहा, इस किस्म के मुनादा में क्या पसंदीदा, फतहा पसंदीदा। भाई फतहा क्यों पसंदीदा, अब उसकी वजह जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि फतहा अखफुल हरकात है, और नीज ये मुनादा जो है, मुनादा की असल हरकत भी क्या है, फतहा है, क्योंकि वो मंसूब है। बात समझ में आ गई, या जैदू असल में क्या है, अदउ जैदन, तो चूंकि इसकी असल हरकत भी फतहा थी और फतहा खफीफ भी है, तो इसलिए इसको मबनी अलल फतहा बनाया गया। तो कहते हैं फखफफूहु बिल फतहती, तो इसको खफीफ बनाया फतहा के जरिए। अल्लती हिया हरकतुहुल असलिया, वो फतहा जो इसकी असली हरकत है, लिकाउनी ही मफूलन बिही, इस वजह से कि ये मफूल बिही है अदउ फेल के लिए। बात समझ में आ गई, लेकिन याद रखना दोनों फतहों में फर्क है। या जैदु असल में क्या है, अदउ जैदन, ये फतहा जो है ये एराब वाला फतहा है, ये एराब है, ये नसब है। और या जैदा बना अमरीन, ये जो फतहा है ये बिना वाला है भाई, तवज्जो है। तो सूरत दोनों की एक जैसी है, लेकिन दोनों में फर्क है, एक फतहा एराब वाला और एक फतहा बिना वाला है भाई। आगे देखिए, कहते हैं वह ईदा नू दियल मुआर्रफ बिल्लामी ऐ ईदा उरीद निदा उहू कीला मसलन या अय्युहर रजुल। जी पहले मतन मतन देख लें, कहते हैं वह ईदा नू दियल मुआर्रफ बिल्लामी कीला या अय्युहर रजुल वया हाजर रजुल वया अय्युहादर रजुल। भाई मैंने पहले बयान किया था कि ये हुरूफ निदा ये आलाए तारीफ हैं, ये जब किसी लफ्ज़ पर दाखिल होते हैं तो उसको वो मारिफा बना देते हैं। रजुल का लफ्ज़ नकेरा है, लेकिन मैं किसी मुआयन आदमी को जब निदा देता हूं या रजुलो, अब ये मारिफा बन गया, क्योंकि मुआयन आदमी को निदा है। इसी तरह अलिफ लाम भी आलाए तारीफ है, तो ये दोनों आलाए तारीफ हैं, अलिफ लाम भी और हरफे निदा भी, लिहाजा ये दोनों जमा नहीं होते। तवज्जो है, तो अगर किसी मुअर्रफ बिल्लाम को निदा देनी हो फिर कैसे निदा देंगे। मसलन मैं अल हसन को निदा देना चाहता हूं जिस पर अलिफ लाम है, तो आपको साहिब काफिया बतलाएंगे कि फिर दरमियान में अय्युहा ले आते हैं या हाजा ले आते हैं या अय्युहाजा ले आते हैं। तवज्जो है, मुजक्कर के लिए क्या लाएंगे, अय्युहा, और मुअन्नस के लिए अय्यतुहा लाएंगे। तो अल हसन को मैं निदा दूंगा, कैसे कहूंगा, या अय्युहल हसनो या हाजल हसनो, या दोनों को ले आएंगे या अय्युहा जल हसनु। तवज्जो है, तो दरमियान में क्या लाएंगे, अय्युहा या हाजा ले आएंगे, या दोनों को मिलाकर ले आएंगे अय्युहाजा। तवज्जो है, तो कहते हैं वह ईदा नू दियल मुआर्रफ बिल्लामी, और जब निदा दी जाए किसी मुआर्रफ बिल्लाम को, कीला तो यूं कहा जाएगा मसल मिसाल के तौर पर या अय्युहर रजुलु, देखो दरमियान में अय्युहा ले आए, या हाजर रजुलु दरमियान में हाजा ले आए, व या अय्यू हाजर रजुलु देखो अय्यू भी ले आए दरमियान में और हाजा भी ले आए भाई। वल तजमु रफ अर रजुली ली अन्नहुल मकसूद बिन निदाई, तरकीब सुनो भाई, ये जरा मतन पे नजर रखो, या अय्यू हर रजुलु या हरफे निदा कायम मकाम अदउ फेल के, अय्यू मुनादा मुफरत मारिफा मबनी अला जम, जैसे या जैदू मुनादा मुफरत मारिफा था तो मबनी अला जम था, अब दरमियान में अय्यू आ गया, अब ये अय्यू मुनादा है, तो अय्यू ये मुनादा है, मबनी अला जम है और मंसूब महलन है क्योंकि मफूल भी ही है, और दरमियान में ये जो हा है ये हरफे तंबीह है, ये हरफे तंबीह किसी को मुतनब्बे करने के लिए, बेदार करने के लिए, मुतवज्जे करने के लिए, किसी की एक चीज की तरफ तवज्जो नहीं है, हा देखो एकदम वो एक शख्स मुतवज्जे हो जाएगा। तो ये हा क्या है, मुतनब्बेह करने के लिए है, किसी को बेदार करने के लिए, कहीं वो गाफिल ना हो भाई। और अर्रजुलू ये सिफत है अय्यू की, फिर सुनो, या हरफे निदा कायम मकाम अदउ फेल अय्यू मुनादा मुफरद मारिफा मबनी अला जम मनसूब महल्लान मौसूफ हा हरफे तंबीह भाई अर्रजुलू मरफू लफजान सिफत है अय्यू की, वो मौसूफ और ये सिफत और ये उसके लफ्जों पर महमूल है। आपने पढ़ा था या जैदुल आकिलु और या जैदुल आकिला, दोनों तरह पढ़ना जायज था। और वहां अल आकिलु क्यों पढ़ते थे, या जैदुल आकिलु भाई या जैदुल आकिला, अल आकिला क्यों पढ़ते थे, मुनादा के महल पर हमल करते हुए। और या जैदुल आकिलु रफा क्यों पढ़ते थे, मुनादा के लफ्जों पर हमल करते हुए। बात समझ में आ गई, क्योंकि वो जम्मा भी किसकी तरह है, रफा की तरह है, क्योंकि आमिल की वजह से जम्मा आया है, हर वक्त तो जैद पर जम्मा नहीं होता, तो वो जम्मा भी रफा जैसा हुआ, लिहाजा उसके लफ्जों पर हमल करते हुए सिफत पर रफा। तो यहां पर भी अर रजुल पर क्या पढ़ते हैं, रफा, किस पर हमल करते हुए, अय्यू के लफ्जों पर हमल करते हुए, क्योंकि अय्यू पर जो जम्मा आया वो हमेशा जम्मा आता है या मुनादा होने की वजह से जम्मा आया, मुनादा, तो गोया ये जम्मा आमिल की वजह से आया, किसकी वजह से, तो ये अजम्मा भी किसकी तरह हुआ, रफा जैसा हुआ, लिहाजा इसके ताबे पर भी क्या पढ़ेंगे, रफा। बात समझ में आ गए, तो ये अय्यू हुआ मौसूफ और अर्रजुल हुई उसकी सिफत। बात समझ में आ गए भाई, पीछे जो जिक्र हुआ था या जैदुल आकिलु और या जैदुल आकिला, वहां सिफत में दोनों एराब पढ़ने जायज थे, सिफत में वो मुनादा जो मबनी हो किस पर, जम्मा पर, उसकी सिफत में दोनों एराब पढ़ना जायज। तो या अय्युहर रजुलु और या अय्युहर रजुला, यहां भी दोनों जायज होने चाहिए, क्योंकि अय्यू क्या है, मुनादा मबनी अला जम, और इसकी सिफत में दोनों एराब जायज होते हैं। कहते हैं नहीं, यहां अर रजुल पर रफा ही पढ़ सकते हैं, नसब नहीं पढ़ सकते। भाई क्यों नहीं पढ़ सकते नसब, कहते हैं कि चूंकि असल मुनादा यही है, आप तो दरमियान में अय्युहा ले आए, मुनादा किसको बना दिया, अय्यू को, लेकिन असल मुनादा अय्यू है या अर्रजुल है, आपने तो अभी अय्यू को मुनादा बना दिया, लेकिन हकीकत में आप निदा किसको देना चाहते थे, अर्रजुल, तो मकसूद भी निदा अर्रजुल है भाई। तो इसमें अगर दोनों एराब पढ़ेंगे तो आपने तो गोया इसको सिफत वाला दर्जा ही दे दिया, सिफत में दोनों एराब जायज थे, या जैदुल आकिलो और या जैदुल, लेकिन यहां पर ये अर्रजुलु उस सिफत से मुख्तलिफ है, सिफत और मौसूफ में से मौसूफ मकसूद होता है, सिफत मकसूद नहीं, जबकि यहां पर मकसूद बिन निदा कौन है, अय्यू मकसूद है या अर्रजुल मकसूद है, अर्रजुल मकसूद है, अय्यू तो वैसे ही दरमियान में फसल करने के लिए आप लाए, ताकि या और अलिफ लाम के दरमियान क्या हो जाए, फसल हो जाए। बात समझ में आ रही है, तो लिहाजा इस अर्रजुल में यह बेशक अय्यू की सिफत है, और मुनादा मुफरद मारिफा की सिफत में रफा भी जायज और नसब भी, लेकिन इसमें रफा ही पढ़ते हैं अरब, क्योंकि ये क्या है, मकसूद बेन निदा, अगर इसमें दोनों चीजें जायज हो जाएं फिर तो ये बिल्कुल ताबिया बना दिया आपने, हालांकि ये ताबिया है या ये मकसूद बिन निदा है, ये तो मकसूद बिन निदा है, तो ताबिया से फर्क करने के लिए पता चले कि ये ताबिया नहीं है, ये है असल में मकसूद बिन निदा, अय्यू तो हम वैसे दरमियान में फसल के लिए लेकर आए हैं, तो इस अर्रजुल पर रफा ही पढ़ते हैं, इस पर रफा ही पढ़ते हैं। बात समझ में आ गए, तो कहते हैं वल्तजमु रफ अर्रजुली, और अरबों ने लाजिम पकड़ा है रफ अर्रजुली, अर्रजुल के रफा को, यानी इस पर रफा ही पढ़ते हैं, नसब नहीं पढ़ते। लिअन्नहुल मकसूद बिन निदाई, इसलिए क्योंकि ये रजुल क्या है, मकसूद बिन निदा है, क्योंकि इसी को तो निदा देना मकसूद है भाई। आगे देखिए व तवाबिही, इसका आतफ है अर्रजुल पर, वल्तजमु रफ अर्रजुली व तवाबिही, और अरबों ने लाजिम पकड़ा है रजुल के रफा को भी, और उस रजुल के जो तवाबे हैं उनके रफा को भी लाजिम पकड़ा है। तवज्जो है, भाई देखिए, अर रजुल ये मरफू है और ये असल में मकसूद बिन निदा है, तो आगे जो इसकी सिफतें आएंगी, आगे उसकी सिफतें आएंगी, यूं कहो जो भी तवाबे उसके आएंगे उन पर भी रफा ही पढ़ना है, उन पर भी रफा ही पढ़ना है। मसलन अर रजुल की सिफत में अशरीफ लाता हूं तो कैसे पढ़ूंगा, या अय्युहर रजुल शरीफु, या अय्युहर रजुल शरीफु। अच्छा, ये शरीफ मुजाफ है? नहीं, ये मुफरद है। मुजाफ ले आओ, उसको भी मरफू पढ़ना है, या अय्युहर रजुलु जुल्माली, क्योंकि अर रजुल मरफू है, ये मौसूफ है, अर रजुल मरफू है, और अशरीफ मसलन पहले इसकी सिफत हम लाए थे तो अशरीफ सिफत है इसकी, और मौसूफ मौरब है या मबनी है, अर रजुल। अब देखो अय्यु है मौसूफ और अर रजुल है उसकी सिफत, और अर रजुल के बाद जो चीजें आएंगी अब वो अर रजुल मौसूफ है और आगे उसकी सिफतें आएंगी, और अर रजुल मरफू है या मबनी अला जम है, ये तो मरफू है, अर रजुल मालूम हो ये मौरब है, ये मबनी नहीं, अय्यू तो मबनी था लेकिन ये अर रजुल मौरब है, और मुनादा मौरब के जो ताबे होते हैं उसके लफ्जों के ताबे होते हैं, तो अर रजुल मरफू है तो इसकी सिफतें भी, इसके तवाबे भी मरफू होंगे, चाहे वो मुजाफ हो चाहे मुफरद हो। भाई तवज्जो है, तो अल आकिल को सिफत बनाए अर रजुल की, जरा कैसे कहेंगे, या अय्युहर रजुलुल आकिलु, अल आकिल को बनाओ ना अर रजुल की सिफत, कैसे कहेंगे, हां या अय्युहर रजुलुल आकिलु, यहां नसब नहीं जायज, अल आकिला नहीं पढ़ सकते। भाई क्यों अल आकिला क्यों नहीं पढ़ सकते, कहते हैं वजह यह क्योंकि यह मुनादाए मबनी की सिफत नहीं है, यह अल आकिल सिफत अय्यू की है या अर रजुल की है, अर रजुल की सिफत है, अल आकिल किसकी सिफत है, अब अगर यह मुनादाए मबनी अल जम की सिफत होती तो उसमें तो दो एराब जायज, लेकिन यह तो अर रजुल जो मरफू है उसकी सिफत है। बात समझ में आ गई, देखिए भाई दोबारा देखिए, कहते हैं वल तजमू रफ अर रजुली, और अरबों ने लाजिम पकड़ा है अर रजुल के रफा को, यानी इस पर वो रफा ही पढ़ते हैं, रफा ही इस पर पढ़ेंगे और कोई हरकत नहीं, ले अन्नहुल मकसूद बिन निदा, इसलिए क्योंकि वो मकसूद बिन निदा है, व तवाबिही, और इसी तरह इस अर रजुल के जो तवाबे हैं उस पर भी रफा को अरबों ने लाजिम पकड़ा है कि उस पर रफा ही पढ़ना है। भाई क्यों रफा क्यों पढ़ना है, कहते हैं ली अन्नहा तवाबे मुआरबिन, इसलिए क्योंकि ये मुआरब के ताबे हैं, मुनादा मबनी के ताबे नहीं है, और मुआरब जब मरफू है तो सिफत और तवाबे भी क्या होंगे, मरफू होंगे। अब आइए शरा के साथ इसको देखें, कहते हैं वईदा नूदियल मुअर्रफ बिल्लामी, और जब निदा दी जाए मुअर्रफ बिल्लाम को, ऐ ईदा उरी द निदा उहू, यानी जब उसकी निदा का इरादा किया जाए, जब क्या किया जाए उसकी निदा का इरादा किया जाए, मतन में क्या आया वईदा नूदियल मुअर्रफ बिल्लामी, जब मुअर्रफ बिल्लाम को निदा दी जाए, और साहिब जामी क्या फरमा रहे हैं, इजा उरीदा निदा, जब निदा का इरादा किया जाए, तवज्जो है भाई देखिए ना, जरा मतन को मतन से जोड़ें, वह इजा नूदियल मुअर्रफ बिल्लामी, जब मुअर्रफ बिल्लाम को निदा दी जाए, कीला तो क्या कहा जाए, या अय्युहर रजुलु, जब मुअर्रफ बिल्लाम को निदा दी जाए, मसलन इधर देखो, इधर देखो, मैं आपसे कहता हूं इजा जा अका जैदुन फ अक्रिम हु, इजा जा अका जैदुन, जब आपके पास जैद आए तो फिर उसका इकराम करना, मालूम हुआ जैद पहले आएगा और इकराम उसके, तवज्जो है, मालूम हुआ जैद पहले आएगा और इकराम उसके बाद होगा। यहां पर आप जरा इबारत पे गौर करो, वह इजा नूदियल मुअर्रफ बिल्लामी, जब मुअर्रफ बिल्लाम को निदा दी जाए तो कीला या अय्युहर रजुलु, तो क्या कहा जाए, मालूम मुअर्रफ बिल्लाम को निदा पहले देंगे और या अय्युहर रजुल बाद में कहेंगे। इजा जा अका जैदुन, जब आपके पास कौन आए, जैद आए, अक्रीम हूं तो उसका इकराम करना। मुझे बताइए जैद का आना और इकराम इकट्ठे, या जैद पहले आएगा और इकराम बाद में होगा, زید پہلے آ گیا، یعنی شرط پہلے ہوتی ہے مشروط با. یہاں پر بھی اسی طرح اذا نودی، جب معرب اللام کو ندا دی جائے، معلوم ندا پہلے دی جائے گی اور اس کے بعد کیا کہا جائے گا، یا یوہر رجل کہا جائے گا، حالانکہ یہ تو بات ہی نہیں بنتی. جب ندا دینے کا ارادہ ہو تب ہی درمیان میں کیا لے آؤ، ایوہا وغیرہ لے آؤ. بات سمجھ میں آ گئے؟ تو یاد رکھنا متن میں آیا تھا ایزا نو دیا، شارح جامی نے بتلا دیا ایزا اریدا ندا اہو، جب معرف باللام کو ندا دینے کا ارادہ کیا جائے. بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں نو دیا فیل بول کر ارادہ ندا مراد ہے، یعنی فیل بول کر ارادہ فیل مراد ہے، فیل بول کر ارادہ فیل مراد ہے. یاد رکھنا ایک قیمتی نقطہ، عربی زبان میں بعض اوقات فیل بول کر ارادہ فیل مراد ہوتا ہے، فیل بول کر ارادہ فیل مراد ہوتا ہے. جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو پھر وضو کرو. مجھے بتائیے، آپ جب نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد جا کر پھر وضو کرتے ہیں، یا جب نماز کے لیے اٹھنے کا ارادہ ہو تو وضو کرتے ہیں؟ دیکھا، تو یہاں اذا قمتم بول کر ارادہ قیام مراد ہے، کہ اے مومنو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو جا کر کیا کر لو، پہلے وضو کر لو. تو دیکھا قیام بول کر کیا مراد ہے، ارادہ قیام مراد. ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی شخص آئے پہلے آ کر صف میں کھڑا ہو جائے، مسجد میں مصلی پر کھڑا ہو جائے، اب کیا ہوا، اذا قمتم، جب تم نماز کے لیے کیا ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، پھر جا کر کیا کر لو، وضو کر لو. تو معلوم ہوا یہاں قیام بول کر ارادہ قیام مراد ہے، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو جا کر کیا کر لو، وضو کر لو. اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبص والخبائث، کہ حضور علیہ السلام کان اذا دخل الخلاء، جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تھے، بھئی بیت الخلاء کے اندر جا کے دعا پڑھتے ہیں یا جب داخل ہونے کا ارادہ ہو تب دعا پڑھتے ہیں؟ تو حدیث میں تو کیا آ رہا ہے، اذا دخل الخلاء، یہاں بھی کیا مراد ہے، ارادہ دخول مراد ہے. اذا ارادہ ان يدخل الخلاء، حضور علیہ السلام بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تھے تو دعا پڑھ لیتے تھے. اسی طرح قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب آپ قرآن پڑھیں تو اعوذ باللہ پڑھیں. کیا معنی، پہلے قرآن پڑھیں پھر اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں، یا قرآن پڑھنے کا جب ارادہ ہو، قرآن پڑھنے کا ارادہ ہو. دیکھا، تو یہاں بھی اذا قرأت، قراءت بول کر ارادہ قراءت مراد ہے، تو یہاں پر بھی اذا نودیا بول کر ارادہ ندا مراد ہے، یعنی فعل بول کر ارادہ فعل مراد ہے. تو کہتے ہیں وَإِذَا نُودِيَ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ، اور جب ندا دی جائے معرف باللام کو، اَيْ اِذَا اُرِيدَ نِدَاؤُهُ، یعنی جب اس کی ندا کا ارادہ کیا جائے، قِيلَ، تو کہا جائے گا، مثلاً، مثال کے طور پر، یا اَيُّهَا الرَّجُلُ، کیا کہا جائے گا، یا اَيُّهَا الرَّجُلُ. قیلہ کے بعد صاحب جامی نے کہا مثلاً، مثال کے طور پر یوں کہا جائے گا، یہ مثال کے طور پر. بھئی وجہ یہ کہ ورنہ تو شرط اور جزا میں مناسبت نہیں ہے بھائی، شرط اور جزا میں مناسبت. دیکھو شرط ہے عام اور جزا ہے خاص. ذرا صرف متن کو دیکھو، وَإِذَا نُودِيَ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ، اور جب معرف باللام کو ندا دینے کا ارادہ کیا جائے، توجہ ہے، جب معرف باللام کو ندا دینے کا ارادہ کیا جائے، الحسن معرف باللام ہے یا نہیں، میں اس کو ندا دینا چاہتا ہوں. کہتے ہیں جب معرف باللام کو ندا دینے کا ارادہ ہو تو قیل یا ایھا الرجل، تو کیا کہا جائے گا، میں ندا دینا چاہتا ہوں الحسن کو، اور صاحب کافیہ کیا فرما رہے ہیں کہ الحسن یعنی معرف باللام کو جب ندا دینے کا آپ کا ارادہ ہو تو کیا کہہ دیا کرو، یا ایھا الرجل کہہ دیا کرو. الحارث کو میں ندا دینا چاہتا ہوں، الحارث بھی کیا ہے، معرف باللام. صاحب کافیہ کیا فرما رہے ہیں کہ جب الحارث کو ندا دینے کا ارادہ ہو تو کیا کہہ دیا کرو، یا ایھا الرجل کہہ دیا کرو. तो शर्त है आम, जिस मुआर्रफ बिल्लाम को भी आपको निदा देने का इरादा हो, और जजा है खास, तो क्या कह दिया करो, या युहर रजुल कह दिया करो, हालांकि ये तो बात नहीं बनती। तो अब ये साहिब जामी ने बतला दिया कीला मसलन कि ये साहिब काफिया मिसाल जिक्र फरमा रहे हैं कि यही या युहर रजुल कहना मुराद नहीं है, यानी इसके मिसल कहेंगे, यानी हरफ निदा और मुआर्रफ बिल्लाम के दरमियान अयुहा या हाजा या अयुहाजा वगैरह को ले आएंगे। भाई बात समझ में आए, तो ये मिसाल जिक्र कर रहे हैं। तो कहते हैं कीला मसलन, तो कहा जाएगा मिसाल के तौर पर या अयुहर रजुलु बितवस्सुति अय्यिन मअहा इत्तंबीही बैन हर्फिन निदाई, दरमियान में लाते हुए अय्युन को, दरमियान में किसको लाएंगे, अय्युन को लाएंगे, मअहा इत्तंबीही हाय तंबीह के साथ, बैन हर्फिन निदाई वल मुनादल मुअर्रफ बिल्लाम, हर्फ निदा और मुनादा मुअर्रफ बिल्लाम के दरमियान। भाई क्यों दरमियान में ये आयु माहा तंबीह के क्यों लाएंगे, कहते हैं तहर्रुजन अन इज्तिमाई आला तय्यिब तारीफ बिला फासिलतिन, तहर्रुज का माना है बचना, ये मफूल लहू वाके हो रहा है, मकबल की इल्लत बयान कर रहा है कि बचने के लिए अन इज्तिमाई आला तय्यिब तारीफी, ये असल में क्या था आला तैनी, दो आला तारीफ हैं, एक या और एक अलिफ लाम, तो कहते हैं तहर्रुजन अन इज्तिमाई आला तय्यिब तारीफी बिला फासिलतिन, बचने के लिए इस बात से कि दो आला तारीफ जमा हो जाएं बिला फासिलतिन बगैर किसी फासिले के। बात समझ में आ गई, फासिले के साथ तो अभी भी जमा है या अयुहर रजुल, या भी है और अलिफ लाम भी है, लेकिन दरमियान में फासिला है, तो फासिला के साथ जमा होना इनका जायज है, बगैर फासिला के जायज नहीं। तो ये माना है तहर्रुजन अन इज्तिमाई आला तय्यिब तारीफ बिला फासिलतिन, दो आला तारीफ के बगैर फासले के जमा होने से बचने के लिए। वया हाजर रजुलु बितवस्सुति हाजा, इसी तरह या हाजर रजुल कहेंगे बितवस्सुति हाजा, हाजा को बीच में लाते हुए, यहां भी उसी तरह तरकीब होगी, या हरफे निदा कायम मकाम अदउ, हा हरफे तंबी, जा इसमें इशारा, याद रखो ये जो इसमें इशारा के साथ हा जुड़ी होती है हाजा और हाजही, इसमें ये हा तंबीह के लिए होती है और जा ये है इसमें इशारा, हाजा में जा इसमें इशारा है और हा मुतनब्बेह करने के लिए है, तंबीह के लिए है, इसी तरह हाजही इसके अंदर भी ये हा क्या है तंबीह के लिए है और जीही ये क्या है इसमें इशारा, इसी तरह हा उलाई ये हा क्या है तंबीह के लिए और उलाई ये है इसमें इशारा। जी तरकीब सुने, या हरफे निदा कायम मकाम अदउ फेल के हा हरफे तंबीह, जा इसमें इशारा और ये मुनादा है, मुफरद मारिफा है, मुजाफ नहीं है, तो ये मबनी है, मबनी आला जम है तकदीरन, मबनी आला जम है, मुनादा मुफरद मारिफा है ना, और मुनादा मुफरद मारिफा क्या होता है मबनी होता है अलामत रफा पर, तो ये भी ये तो पहले से ही मबनी है, तो हम यूं कहेंगे ये मबनी अला जम है तकदीरन, भाई मबनी अला जम है तकदीरन और अर रजुल उसकी सिफत है भाई। व या अय्युहादर रजुल और इसी तरह या अय्युहादर रजुल कहेंगे बी तवस्सुतिल अमरैनी मान, यानी इकट्ठे दोनों अमरों को बीच में लाएंगे, दोनों चीजें इकट्ठी दरमियान में लाते हुए अय्यू को भी ले आए और हाजा को भी ले आए, इसमें भी वही तरकीब या कायम मकाम अदउ फेल के और अय्यू मुनादा मबनी अला जम और मनसूब महलन और जा ये इसकी सिफत सिफत अव्वल और अर रजुल उसकी सिफत सानी है भाई। आगे देखिए वल तजमु या अनिल आराबा और लाजिम पकड़ा है या अनिल आराबा, यानी के अरब ने भाई या अनिल आराबा, मैंने अरब को नस पर नसब पढ़ा, क्यों नसब पढ़ा, क्योंकि या अनि के लिए मफूल है, किसके लिए ये तफसीर कर रहे हैं ना, वल तजमू के अंदर ये वो जमीर किसको राजे है, उन्होंने लाजिम पकड़ा, भाई किन्होंने लाजिम पकड़ा, तो एक सूरत क्या थी तफसीर आई के साथ करते, यूं कहते आयिल आरबु आयिल अल आराबू रफा पढ़ते, क्यों पर रफा पढ़ते, क्योंकि ऐ के बाद जो आता है वो माकबल से बदल बनता है, और इल्तजमू में वो क्या है, फाइल है, और फाइल क्या होता है, मरफू। तो आगे अल आराबू, ये जो बदल अल आरब आएगा वो भी क्या बनेगा, मरफू। लेकिन यहां वो यानी लेकर आए, यानी के अंदर जमीर राजे है साहिब काफिया को, आना यानी का माना होता है इरादा करना, यानी ये साहिब काफिया ने इरादा किया है अल आराबा, किसका, आरब का, तो यह मफूल भी ही बन रहा है। तो कहते हैं वल तजमू, और उन्होंने लाजिम पकड़ा है, या अनिल आरबा, यानी कि अरब ने रफ अर रजुली, अर रजुल के रफा को मसलन मिसाल के तौर पर, यह भी मिसाल के तौर पर है, क्योंकि अर रजुल से अर रजुल हर जगह तो अर रजुल नहीं आएगा, कहीं अल हसन आएगा, कहीं अल हारिस आएगा, तो यह भी मिसाल के तौर पर है कि इस, यानी इस मुनादा के अंदर रफा को लाजिम पकड़ा है कि इसमें रफा ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ सकते। वह इन कान सिफतन, अगरचे ये क्या है, सिफत है, या अय्यू हर रजुलू, अय्यू क्या है, मौसूफ, और अर रजुलू उसकी सिफत, और सिफत में कितनी, मुनादा मबनी अला जम हो, उसकी सिफत में कितनी वजहें जायज थी, दो वजहें, या जैदुल आकिलो और या जैदुल आकिला, लेकिन इसके अंदर नसब नहीं पढ़ना बल्कि रफा पढ़ना है, क्योंकि यह मकसूद बिन निदा है। तो कहते हैं वह इन कान सिफतन, अगरचे ये सिफत है, वह हक हुआ जवाजुल वजहैनी, और इसका हक जो है दोनों वजहों का जायज होना है, अगरचे ये मुनादा मबनी की सिफत है, और इसका हक तो क्या है कि इसमें दोनों वजहें जायज होनी चाहिए, रफा भी और नसब भी, लेकिन अरबों ने इसमें रफा लाजिम पकड़ा है, वो इसमें नसब नहीं पढ़ते। तो कहते हैं वह इन कान सिफतन, अगरचे ये सिफत है, वह हकुहा जवाजुल वजहैनी, और हक इसका जो है वो दोनों वजहों का जायज होना है, अर रफ़ु व नस्बु, रफा भी और हक इसका ये है कि इसमें दोनों वजहें जायज हो, रफा भी और नसब भी, कमा मर्रा, जैसे कि ये बात पीछे गुजर गई, भाई मैं पहले भी कई दफा बयान कर चुका, फिर सुन लें, अल वजहैन ये इजमालन बयान कर दिया कि उस मुनादा मबनी के सिफत में कितनी वजहें जायज थी, दो, या जैदुल आकिलू भी और या जैदुल आकिला भी, दो वजहें जायज थी, इजमालन जिक्र कर दिया, जवाजुल वजहें, दो वजहें उसमें जायज हैं, और आगे अर रफ़ व नस्बु, ये उसी वजहें की तफसील कर दी। तवज्जो है, एक होता है इजमाल, एक है तफसील, याद रखो ये जगह जगह इबारतें आती हैं, मैं इसलिए बार बार जिक्र करता हूं ताकि आपके जहन में बात बैठ जाए। भाई एक होता है इजमाल, इजमाल यह है जिसमें एक एक फर्द की, एक एक चीज की तफसील नहीं होती, बस मैं आपसे कहता हूं मेरे तीन दोस्त हैं, भाई कौन कौन है वो मैंने जिक्र नहीं किया, बस इजमालन बता दिया मेरे तीन दोस्त हैं, और एक सूरत यह है कि मैं तफसील से हर एक का नाम लूं, जैद, अमर और बकर मेरे दोस्त हैं, इसको कहते हैं तफसील। तवज्जो है, तो इजमाल के बाद जब भी तफसील आए वहां तीन तरह, तीन एराब जायज होते हैं, रफा, नसब और बदल। इजमाल के बाद जब भी तफसील आए कितने एराब, तीन, कौन कौन से, रफा, नसब और बदल, बदल, और बदल पर वही एराब आता है जो मकबल पर हो। लिहाजा ये अर्रफा और नसब ये किसका बयान है, ये किसकी तफसील है, ये अलवजहैन की तफसील है। तवज्जो है, तो इस पर रफा भी पढ़ सकते हैं, अर रफ़ु व नस्बु, रफा और नसब, इस पर रफा भी पढ़ सकते हैं। रफा क्यों पढ़ेंगे, इसको खबर बनाएंगे मुब्तदाए महजूफ के लिए। दो वजहें जायज हैं, कौन सी दो वजहें, हुमा, मौसूफ महजूफ निकाल लो, वो दो वजहें जो हैं अर रफ़ु व नस्बु, रफा और नसब है, तो एक ही मुब्तदा निकाल लो चाहे दोनों के लिए, हुमा, और ये हुमा जमीर किसको राजे, अलवजहैन, भाई जिसका बयान आया अभी पीछे, जिसकी तफसील बयान हो रही है, तो वो दो वजहें, या दोनों के लिए अलग अलग मुब्तदा निकाल लो, अहद हुमा अर रफ़ु व सानी हिमा अन नस्बु, तो इस सूरत में यह खबर बनेंगे, मुब्तदा महजूफ निकाला चाहे एक निकाल लो दोनों के लिए मुब्तदा, चाहे दोनों के लिए अलग अलग मुब्तदा निकाल लो, ये खबर बनेंगे, और खबर क्या होती है, मरफू, इसीलिए अर रफ़ु व नस्बु पढ़ेंगे, और एक सूरत है कि इस पर नसब पढ़ें, इस सूरत में आनी फेल के लिए इसको मफूल बनाएं, आनी फेल अना जमीर इसके अंदर फाइल, अना यानी का माना अभी मैंने बयान किया, इरादा, इरादा करना, आनी मेरी मुराद यह है, मेरा इरादा इसका है, किसका, अर रफा व नस्ब। इसमें दो वजहें जायज हैं, कौन सी दो वजहें, आनी रफा व नस्बा, मेरी मुराद है रफा और नस्ब। अब ये मंसूब क्यों है, ये आनी के लिए मफूल भी ही बन रहे हैं, और मफूल भी ही क्या होता है, मंसूब। पहली तरकीब के मुताबिक ये दोनों खबर थे, खबर मरफू होती है, दूसरी तरकीब के मुताबिक ये दोनों मंसूब है, मफूल भी ही है आनी फेल के लिए। और तीसरी सूरत यह है कि माकबल से बदल बनाओ, क्या बनाओ, अल वजहैन यह है मुबदल मीन हु, और अर रफ़ व नस्ब उससे क्या है बदल, वो दो वजहें क्या हैं, रफा और नसब हैं, और बदल और मुबदल मीन हु का एराब एक होता है, और अल वजहैन का एराब क्या है, यहां पर मुजाफिले है जवाज के लिए, मजरूर है, तो अर रफ़ व नस्ब यूं पढ़ेंगे। मालूम हुआ ये अर्रफा और नसब, इन जो लफ्ज आए इन पर तीनों एराब आप पढ़ सकते हैं, अर्रफ़ व नस्ब यूं भी पढ़ सकते हैं, अर्रफ़ व नस्ब यूं भी पढ़ सकते हैं, और अर्रफ़ व नस्ब यूं भी पढ़ सकते हैं। तो जहां भी इजमाल के बाद तफसील बयान हो वहां कितने एराब जायज, तीन, पहला रफा किस वजह से, खबर होने की बिना पर, दूसरा नसब क्यों, मफूल बिही होने की वजह से, और तीसरा बदल बना सकते हैं। बात समझ में आ गई, बदल फिर माकबल के मुताबिक उस पर एराब आएगा। आगे देखिए भाई, कहते हैं लि अन्नहु अयिर, जी लि अन्नहु अयिर रजुलु, अयिर रजुला, अयिर रजुली किस तरह पढ़ेंगे भाई, अभी मैंने जाब्ते जिक्र कर दिए, कैसे पढ़ेंगे, शाबाश, अयिर रजुला, क्यों, क्योंकि मैंने बताया ये आई के बाद जो होता है वो माकबल से बदल बनता है, और ये अर रजुल किसकी तफसीर है, ये माकबल में हा जमीर जो है उसकी तफसीर कर रहे हैं, और हा जमीर अन्ना का इसम है, और अन्ना का इसम क्या होता है, मंसूब, तो इसलिए बदल भी क्या होगा, मंसूब। कतेली अन्नहु अयिर रजुला मसलन हुअल मकसूद बिन निदाई, इसलिए क्योंकि रजुल जो है मिसाल के तौर पर वही मकसूद बिन निदा है, फल तुजिमा रफ़ुहु, लिहाजा इसके रफा को लाजिम पकड़ा गया, लितकून हरकतुहुल इराबियतु मुआफ़क़तन लिल हरकतिल बिनाइयति, ताकि इसकी इराबी हरकत, इस अर्रजुल की इस पर इराब है ना, इसकी इराबी हरकत मुआफिक हो जाए, लिल हरकतिल बिनाइयति उस बिना वाली हरकत के, अल्लती ही अलामतुल मुनादा जो कि मुनादा की अलामत है, फतदुल्लु तो ये दलालत करेगी, अला अन्नहु हुवल मकसूद बिन निदाई के वही मकसूद बिन निदा है। भाई इधर देखिए, मुनादा मुफरद मारिफा हो तो वो मबनी होता है जम्मा पर, या जैदु, तवज्जो है, अब या अय्युहर रजुलु, ये अर रजुल पर रफा अरबों ने लाजिम पकड़ा, क्यों, कहते हैं वजह ये क्योंकि ये मकसूद बिन निदा है, ये और जब मकसूद बिन निदा है तो इसको तो मबनी अला जम होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, मबनी अला जम, लेकिन ये तो इस वक्त सिफत बन गया, मुनादा तो कौन है, अय्यू है, लेकिन मकसूद बिन निदा अर रजुल है, तो उसको अगर मबनी अला जम नहीं कर सकते तो कम अज कम उसी जैसा एराब दे दो, रफा दे दो, क्या दे दो, अब इसका यह रफा बतलाएगा कि यह मकसूद बिन निदा है। भैया अय्युहर रजुलु, मकसूद बिन निदा कौन, अर रजुलु, अर रजुलु, जब ये मकसूद बिन निदा है तो इसको क्या होना चाहिए, मबनी अला जम होना चाहिए, लेकिन मबनी अला जम तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो सिफत बन रहा है अय्यू की, तो फिर कम अज कम उसी जैसा एराब दे दो, और जम्मे जैसा एराब क्या है, रफा, ये रफा बतलाएगा कि ये क्या है, मकसूद बिन निदा है, ये ताबिअ नहीं है। भाई ये माना है, कहते हैं फिर तर्जमा देखिए, कहते हैं फल तुजिमा रफ़ुहु, इसके रफा को लाजिम पकड़ा गया, लितकून हरकतुहुल इराबियतु मुआफ़क़तन लिल हरकतिल बिनाइयति, ताकि इसकी इराबी हरकत वो मुआफिक हो जाए उस बिना वाली हरकत के, अल्लती ही अलामतुल मुनादा, जो मुनादा की अलामत है, मुनादा की अलामत जम्मा है ना, ताकि इसका रफा उस मुनादा की हरकत यानी जम्मा के मुआफिक हो जाए, उस जैसा हो जाए। फतदुल्ला, पस ये दलालत करेगा अला अन्नहु हुवल मकसूद बिन निदाई, की यही मकसूद बिन निदा है। वहाजा बिमंजिलतिल मुस्तस्ना अन काइदति जवाजिल वजहैनी फी सिफतिल मुनादा, और कहते हैं ये मुस्तस्ना के दर्जे में है वो जो दो वजहों के जायज होने का कायदा था मुनादा की सिफत में। किसमें? मुनादा की सिफत में। भाई देखिए, मुनादा की सिफत में तो दो एराब जायज थे, या जैदुल आकिलो और या जैदुल आकिला। कहते हैं ये जो है ना ये उससे इस्तिस्ना के दर्जे में है, ये उससे इस्तिस्ना इसे कहते हैं कि इल्ला वगैरह जैसे लफ्जों के जरिए एक चीज जो पहले एक हुक्म में दाखिल थी उसको उस हुक्म से निकाल दिया जाए। मसलन अल कौम, अल कौम मर्दों की जमात को कहते हैं 3 से 10 तक। तबान औरतें भी दाखिल हो जाती हैं, लेकिन असल में ये किसको कहते हैं? मर्दों की जमात को। तो मसलन 5 अफराद हैं, उन 5 में से एक जैद भी है, 5 अफराद हैं उनमें से एक जैद भी है। मैंने आपसे कहा जा अनिल कौमो, मेरे पास वो लोग आए थे, कितने अफराद हैं वो? 5, और उनमें से एक कौन है? जैद। तो जब मैंने कहा जा अनिल कौमो, वो लोग मेरे पास आए थे, आप क्या समझे? जैद भी आया कि नहीं? मालूम हुआ जैद भी आया, क्योंकि जैद भी उन्हीं में से था। लेकिन आगे मैं जैद को इस हुक्म से निकाल देता हूं, इल्ला जैदन, सिवाय किसके? जैद। जा अनिल कौम, वो लोग मेरे पास आए थे, इल्ला जैदन, सिवाय जैद के, यानी जैद के अलावा बाकी आए थे। तवज्जो है? तो जब मैंने सिर्फ ये कहा जा अनिल कौम, वो लोग आए थे, तो इसमें जैद भी दाखिल था। फिर मैंने इल्ला के जरिए जैद को क्या कर दिया? निकाल दिया। इसको कहते हैं इस्तिस्ना, एक चीज जो पहले हुक्म में दाखिल थी फिर उसको उस हुक्म से निकाल दिया जाए, इल्ला वगैरह जैसे अल्फाज के जरिए, इसको कहते हैं इस्तिस्ना। जानिल कौम में जैद दाखिल था और इल्ला जैदान के जरिए फिर उसको क्या कर दिया? निकाल दिया। इस्तिस्ना। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं ये जो जाब्ता जिक्र हुआ कि ये अर रजुल के अंदर रफा ही पढ़ना है, इसमें नसब, हालांकि ये अय्यू की सिफत है या नहीं? और अय्यू क्या है? मुनादा मबनी अला जम। और पीछे आपको क्या बताया था इन्होंने कि वो मुनादा जो मबनी अला जम हो उसकी सिफत में रफा भी जायज और नसब। पीछे जब कहा था कि वो मुनादा जो मबनी अला जम हो उसकी सिफत में रफा भी जायज और, तो अय्यू भी अंदर उसमें दाखिल हो गया या नहीं? क्योंकि सब की बात हो गई, जो भी मुनादा मबनी अला जम होगा, जो भी, तो अय्यू भी उसमें दाखिल हुआ क्योंकि यह भी मबनी अला जम है, और सब का हुक्म क्या बयान कर दिया? उनकी सिफत में रफा भी जायज और नसर। और फिर इसको उससे निकाल कर अब बताया कि नहीं, इस वाले में रफा ही पढ़ना है नसब। तो यह गोया इस्तिस्ना के दर्जे में है, पहले दाखिल था, अब इसको क्या कर दिया? उससे निकाल दिया। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वहादा बिमंजिलतिल मुस्तस्ना अन काइदती जवाजिल वजहैनी फी सिफतिल मुनादा, और ये जो जाब्ता बयान हुआ ये मुस्तस्ना के दर्जे में है। अन काइदती जवाजिल वजहैनी, वो जो कायदा जिक्र हुआ था दो वजहों का जायज होना यानी दो एराब का जायज होना, फी सिफतिल मुनादा, किसके अंदर? मुनादा की सिफत के अंदर वो जो दो वजहों का जायज होने का कायदा बयान हुआ था ये उससे इस्तिस्ना के दर्जे में है कि यहां अर्रजुल अय्यू की सिफत तो बन रहा है लेकिन इसके अंदर दो वजह नहीं जायज बल्कि एक, तो गोया ये उससे इस्तिस्ना के दर्जे में है, पहले दाखिल था अब इसको क्या कर दिया? निकाल दिया। वलिहादा लम यज़कुर हुनाका मा युख्रिजु सिफ़ता लिस्मिल मुबहमी अन तिल्कल क़ाइदती, और इसीलिए इसको वहां जिक्र नहीं किया। भाई देखिए, पीछे क्या जिक्र किया था कि वो मुनादा जो मबनी हो अलामत रफा पर, उसके जो मुफ़रद तवाबे हैं उसके उनमें रफा भी जायज और नसब भी जायज, वहां इस अय्यू का इस्तिस्ना नहीं किया, वहां इस अय्यू का मसलन मैंने कहा जा अनिल कौम, वो लोग मेरे पास आए थे, इल्ला जैदन, सिवाय किसके, जैद, तो जैद को मैंने यही इस्तिस्ना कर लिया या निकाल दिया उससे। लेकिन वहां जब यह जाब्ता जिक्र हुआ था कि वह मुनादा जो मबनी अला जम हो उसके वो तवाबिया जो मुफरद हो उनमें दो एराब जायज हैं, और आगे को यह जिक्र था सिवाय अय्यू वगैरह के, वो मुनादा जो मबनी अलज उसके तवाबिया में रफा भी जायज और सिवाय अय्यू के, वहां कोई इस्तिस्ना किया था नहीं, देखा वहां अगर वहां इस्तिस्ना कर देते तो फिर यहां इसको हम इस्तिस्ना के दर्जे में नहीं बना सकते थे, चूंकि वहां जिक्र नहीं किया अब यहां जिक्र कर रहे हैं, तो ये इस्तिस्ना तो नहीं है लेकिन इस्तिस्ना के दर्जे में ही है। इस्तिस्ना भी किसको कहते हैं, एक चीज पहले हुक्म में दाखिल हो फिर उसको इल्ला के जरिए क्या कर लिया जाए, निकाह। तो ये अय्यू की सिफत भी इसके अंदर दाखिल थी, जब यह कह दिया कि सिफत के अंदर दोनों इराब जायज तो अय्यू की सिफत में भी क्या हो गए, दोनों इराब जायज, लेकिन फिर आगे आकर बतला दिया कि नहीं यहां पर सिर्फ रफा पढ़ना है, तो गोया ये उससे इस्तिस्ना के दर्जे में है। बात समझ में आ गई। फिर याद रखना ये जो अय्यू है ना ये इसमें मुबहम है, ये क्या है इसमें मुबहम, ये कुल में से बाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक मजमुआ है उनमें से बाज के लिए ये अय्यू का लफ्ज बोलते हैं, कभी ये इस्तेफाम के लिए आता है, कभी ये इसमें मौसूल के तौर पर होता है, तो इसका तर्जमा उर्दू में करते हैं कौन या कौन सा या जौन सा, क्या तर्जमा करते हैं कौन या कौन सा या जौन सा। उर्दू में मिसाल देख लें, मसलन मैं कहता हूं मैं उस तालिब इलम को इनाम दूंगा, जौन सा तालिब इलम मेहनत करेगा, देखो जौन सा तालिब इलम, अब मुझे बताइए जौन सा तालिब इलम यह कोई मुतायन तालिब इलम है या मुबहम है, मुबहम है, जो भी मेहनत करेगा वो उसको मैं इनाम दूंगा। तो इसी तरह ये जो अय्यू है ना अय्यू ये भी इसी तरह आता है जौन सा और कौन सा वगैरह के माना में, तो ये इसमें मुबहम है, ये क्या है और ये कुल में से एक मजमुए में से बास के लिए इस्तेमाल होता है, तवज्जो है। तो मालूम हुआ पीछे जब ये जिक्र किया था कि वो मुनादा जो मबनी अला जम हो उसके तवाबिया में रफा भी जायज और वहां किसी इसमें मुबहम का इस्तेसना किया था पीछे, वहां किसी इसमें मुबहम ये अय्यू वगैरह का इस्तेसना नहीं किया, लिहाजा ये किसके दर्जे में है, मुस्तस्ना के दर्जे में है। कहते हैं वलिहादा लम यस्कुर हुना का, और इसीलिए मुसन्निफ ने जिक्र नहीं फरमाया वहां पर मा ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई कैद युखरिजु जो निकाल दे सिफ़ाता लिस्मिल मुबहमी, किसको निकाल दे इसमें मुबहम की सिफत को निकाल दे, अंतिल कल कायदती उस जाब्ते से, या युहर रजुलू या युहर रजुल, भाई मुनादा मबनी अला जम हो तो उसकी सिफत में कितनी सूरतें जायज, दो नसब भी और रफा भी, और या अय्युहर रजुलू ये अय्युबी मबनी अला जम है या नहीं, ये भी मबनी अला जम है, लेकिन इसकी सिफत में दोनों वजहें जायज हैं, अर्रजुल में दोनों वजहें जायज हैं या सिर्फ रफा जायज है, सिर्फ रफा जायज है, तो वहां कोई ऐसी चीज जिक्र नहीं की थी कि जिससे ये वाला इसमें मुबहम को क्या कर दिया जाता उस जाब्ते से खारिज, अगर वहां जिक्र कर देते तो वहां इस्तिस्ना हो जाता, वहां जिक्र नहीं किया तो ये इस्तिस्ना तो नहीं है लेकिन इस्तिस्ना के दर्जे में है ये वाला जो कलाम इन्होंने किया। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वलिहादा लम यस्कुर हुना का, इसीलिए मुसन्निफ ने वहां पर जिक्र नहीं फरमाया मा युखरिजु सिफत अलिस्मिल मुबहम अन तिलकल कायदती, कोई ऐसी कैद जो निकाल दे इसमें मुबहम की सिफत को, ये अय्यु क्या है इसमें मुबहम है और अर्रजुल क्या है उसकी सिफत है, और इस सिफत को क्या किया गया उस जाब्ते से निकाल दिया गया, तो जिक्र नहीं किया जो निकाल दे इसमें मुबहम की सिफत को अन तिलकल कायदती उस जाब्ते से, व तवाबिही, कहते हैं बिल जर, ये जर के साथ है अतफुन अलर रजुली, ये किस पर आतफ है अर रजुल पर आतफ है, ऐ वल तजमू रफ अतवाबिई रजुली, और अरबों ने लाजिम पकड़ा है अर रजुल के तवाबिय के रफा को, के अर रजुल के तवाबिय पर भी क्या पढ़ना लाजिम रफा रफा, मुजाफतन और मुफरदतन, चाहे वो मुजाफ हो चाहे मुफरद। भाई इधर देखिए मुनादा मबनी अला जम हो उसके तवाबिया में, उसके तवाबिया अगर मुफरद हो तो उसमें रफा और नसब दोनों जायज, और अगर मुजाफ होते तो फिर सिर्फ नसब जायज, तवज्जो है। लेकिन यहां ये जो अर्रजुल के तवाबे हैं, चाहे वो मुफरद हो चाहे मुजाफ हो, सब के अंदर रफा ही पढ़ना पड़ेगा। भाई क्यों रफा क्यों पढ़ेंगे? कहते हैं इसलिए क्योंकि ये मुनादा मबनी के तवाबे नहीं है, ये अर्रजुल तो मुअरब है, ये तो मुअरब के तवाबे हैं, ये या जैदुल आकिलु और या जैदुल आकिला, ये अल आकिलु और अल आकिला दोनों एराब जायज। क्यों? क्योंकि ये या जैदू के ताबे हैं जो मबनी है किस पर, मबनी अला जम है। और अर्रजुलु के जो ताबे, अर्रजुल की जो सिफत आएगी तो अर्रजुल तो मबनी नहीं, अर्रजुल तो ये तो मरफू है, तो जब ये मुअरब के ताबे हैं तो मुअरब पर जो एराब आता है तवाबे पर भी वही एराब आता है। तो कहते हैं वल्तजमु रफ़अ तवाबे रजुली, और अरबों ने लाजिम पकड़ा है अर्रजुल के तवाबे के रफा को, यानी उसमें भी रफा लाजिम पढ़ते हैं, मुजाफतन अव मुफरदतन, चाहे वो तवाबे मुजाफ हो या मुफरद हो। नहु मिसाल के तौर पर या अय्युहर रजुलु ज़रीफ, या अय्युहर रजुलु ज़रीफ। देखो ये अर्रजुल फिर मौसूफ बनेगा और अज़रीफ उसकी सिफत, और अर्रजुलु क्या है मरफू है, तो अज़रीफ पर भी क्या पढ़ेंगे रफा, यहां नसब नहीं पढ़ सकते। या अय्युहर रजुलु ज़रीफ, और अज़रीफ मुजाफ है या मुफरद है, मुफरद है देखा। और वह या अय्युहर रजुलु ज़ुल्माली, देखा यह ज़ुल्माल अर्रजुल की सिफत है, और ये जुल माल जू मुजाफ अल माल मुजाफोन इल है, तो इसके अंदर भी रफा ही पढ़ना है, जबकि पीछे क्या बताया था वल मुजाफा तो तोन साबू, लेकिन ये यहां पर रफा ही पढ़ेंगे चाहे मुफरद हो चाहे मुजाफ हो। तो कहते हैं या युहर रजुल जरीफ व या अयुहर रजुल जुल माली, तो अर्रजुल के तवाबे में रफा ही पढ़ेंगे। लिअन्नहा तवाबेउ मुनादम मुअरबिन, इसलिए क्योंकि ये मुनादा मुअरब के तवाबे हैं भाई, क्योंकि ये अर्रजुल जो मकसूद बिन निदा है ये उसके तवाबे हैं, और वो मबनी है अर्रजुल या मौरब है, मौरब है, जब मौरब है तो इसके तवाबे पर भी वही एराब आएगा, वो भी मरफू होंगे। तो कहते हैं लिअन्नहा तवाबे मुनादा मौरबिन, इसलिए क्योंकि ये मुनादा मौरब के तवाबे हैं। व जवाजुल वजहैन इन्नमा यकूनु फी तवाबेइल मुनादल मबनी, और वो जो दो वजहों का जायज होना था वो तो मुनादा मबनी के तवाबे में था, किसमें मुनादा मबनी, और अर्रजुल तो मबनी नहीं है, ये तो मुअरब है, तो इसके तवाबे में रफा ही पढ़ेंगे भाई। बात समझ में आ गई। वकालू बिना अन अला कायदती तजवीज इज्तिमाई हर्फ निदाई मअल्लामी वही इज्तिमाउ अमरैन। जी पहले मतन मतन देखिए। वकालू या अल्लाहु खासतन, वकालू और अरबों ने कहा है या अल्लाह खासतन खास तौर पर, और अरबों ने कहा है या अल्लाह खास तौर पर, ये भी दरअसल इस्तिस्ना के दर्जे में है जो पीछे ज़ाता जिक्र हुआ। अभी आपको बताया कि जब मुनादा मुअर्रफ बिल्लाम हो तो उस पर हर्फ निदा दाखिल नहीं होता बराह रास्त, बल्कि दरमियान में अय्युहा वगैरह लेकर आते हैं, लेकिन लफ्ज़ अल्लाह की यह खसूसियत है कि यह मुअर्रफ बिल्लाम है, इस पर अलिफ लाम दाखिल है, फिर भी इस पर हर्फ निदा दाखिल करते हैं और क्या कहते हैं या अल्लाह कहते हैं, या अय्युहल्लाह नहीं कहते भाई। तो ये लफ्ज अल्लाह की खसूसियत है। याद रखना हुरूफ निदा में से जो या है ना या, ये असल है। हुरूफ निदा पांच हैं, हमजा ऐ अया हया और या, इनमें से या असल है, और इसी वजह से या कसीरुल इस्तेमाल है, सबसे ज्यादा या इस्तेमाल होती है, और लफ्ज अल्लाह पर सिर्फ हर्फे या दाखिल हो सकता है, बाकी और कोई हर्फे निदा का दाखिल करना जायज नहीं भाई। इसी तरह अय्युहा वगैरह के साथ भी, उनके साथ भी सिर्फ या ही इस्तेमाल हो सकता है, उसके साथ कोई और हर्फे निदा इस्तेमाल अय्युहा वगैरह के साथ। और इसी तरह याद रखो हुरूफ निदा में से सिर्फ या का हजफ जायज है और किसी हर्फ निदा का हजफ जायज नहीं है। जैसे कुरान में अल्लाह फरमाते हैं यूसुफो आरिज अन हाजा, उलमा फरमाते हैं कि यहां हर्फ निदा महजूफ है, तो जैसे ही कहा कि हर्फ निदा महजूफ है आप समझ गए कि या महजूफ है, कोई और हर्फ निदा महजूफ नहीं हो सकता। और नीज मुस्तगास्प के साथ भी सिर्फ या ही इस्तेमाल हो सकती है, या लज़ैदिन या ज़ैदा। इसी तरह मंदूब भाई जिस पर रोया जाता है और इजहार गम किया जाता है उस पर भी हुरूफ निदा में से सिर्फ या इस्तेमाल करते हैं। अरबों में जब कोई मरता था मातम करते थे, रोते थे उस पर, तो कैसे पुकारते थे? मसलन जैद मर गया तो कहते या ज़ैदु, इसको मंदूब कहते हैं जिस पर रोया जाए, इजहार गम किया जाए। और इसके लिए वा भी इस्तेमाल करते थे, वा ज़ैदु, तो वा खास है मंदूब के साथ, जबकि या मंदूब के लिए भी इस्तेमाल, मुस्तगास के लिए भी इस्तेमाल, मुनादा के लिए भी इस्तेमाल। बात समझ में आ गई? तो लफ्ज अल्लाह खास है, यह मुअर्रफ बिल्लाम है, लेकिन फिर भी इस पर या दाखिल करते हैं। तो यह पिछले जाब्ते से गोया मुस्तस्ना के दर्जे में है। पीछे तो क्या कहा था कि जब भी मुअर्रफ बिल्लाम को निदा देंगे तो दरमियान में क्या लाएंगे, अयुहा या हाजा या अयुहाजा लेकर आएंगे। तो इसमें तो लफ्ज अल्लाह भी आ गया था, लेकिन फिर उसका इस्तिस्ना कर दिया कि नहीं, लफ्ज अल्लाह में अयुहा वगैरह नहीं लाएंगे खास तौर पर। और फिर यह भी याद रखना कि ये लफ्ज अल्लाह के साथ खास है। वजह यह कहते हैं जाबता है, जाबता है, जाबता यह है कि अलिफ लाम जो है, अलिफ लाम वो एक तो ईवज हो किसी महजूफ का, अलिफ लाम ईवज हो किसी महजूफ का, और नीस कलीमे के साथ लाजिम हो जाए। जहां ये दो शर्तें पाई जाएंगी वहां हर्फ निदा और अलिफ लाम का जमा जायज हो जाएगा। जाबता है, जाबता है जिस लफ्ज में अलिफ लाम ईवज बन जाए किसी महजूफ का, यानी किसी हर्फ को खत्म करके अलिफ लाम को उसका ईवज बना दिया जाए और फिर वो अलिफ लाम उस कलीमे के साथ लाजिम हो जाए, यानी उससे जुदा हो ही नहीं सकता। तो जहां ये दो चीजें होंगी वहां हर्फ निदा और अलिफ लाम का जमा जायज है। कौन सी दो चीजें? कि अलिफ लाम ईवज हो जाए किसी हर्फ का और नीज कलीमे के साथ लाजिम हो जाए, उससे अब जुदा नहीं होता। तो चुनाचे कहते हैं लफ्ज अल्लाह असल में था इलाहुन, इलाहुन का क्या माना, माबूद, फिर इस पर अलिफ लाम लाए, क्या बन गया, अल इलाह, तवज्जो है, फिर हमजा को हजफ किया इलाह का जो हमजा था और अलिफ लाम को उसका ईवज बना दिया। अब ये अलिफ लाम ईवज बन गया किसका, हमजा का, और लाम का लाम में इदगाम किया, क्या बन गया, अल्लाह, तवज्जो है, ये अलिफ लाम किसका ईवज है, इलाह के हमजा का ईवज बन गया, हमजा हजफ हो गया। और नीज ये अलिफ लाम अब कलीमे से जुदा नहीं होता। आम कलाम अरब में कभी भी इलाहुन से जरा हमजा हटाओ, लाहुन, अरबी जुबान में कहीं पर भी लाहुन इस्तेमाल नहीं होता आम कलाम में। आम अरबी कलाम में भाई देखो ना, असल में क्या था, इलाहुन, फिर क्या आया, अलिफ लाम, फिर हमजा को हजफ किया और अलिफ लाम को उसका ईवज बना दिया और ये अलिफ लाम कलीमे के साथ क्या हो गया, लाजिम हो गया। कभी कलीमे से जुदा नहीं होता बगैर अलिफ लाम के, सिर्फ लाहुन इस्तेमाल कर लें अल्लाह ताला की जात के लिए। आम कलाम अरब में नसर के अंदर इस तरह इस्तेमाल नहीं होता। मालूम हुआ ये अलिफ लाम हमजा का ईवज भी है और कलीमे के साथ लाजिम हो गया है, अरब अब इसको कभी जुदा नहीं करते। तो जहां ये दो चीजें होंगी वहां हर्फ निदा और अलिफ लाम का जमा जायज है। बात समझ में आ गई? देखिए भाई किताब पर, अब शरा के साथ देखिए भाई, कहते हैं वकालू, और अरबों ने कहा है बिना अन अला कायदती तजवीज इज्तिमाई हर्फ निदाई मअल्लामी, बिना पर उस कायदे के जो जायज करार देता है हर्फ निदा का जमा होना लाम के साथ। हर्फ निदा का लाम के साथ जमा होने का कायदा क्या, कायदा है क्या, कानून है, कब जायज है हर्फ निदा और अलिफ लाम का जमा होना, जब कितनी चीजें हो, दो चीजें, कितनी चीजें, वही बयान करने लगे। तो कहते हैं बिना अन अला कायदती तजवीज इज्तिमाई हर्फ निदा इमअल्लामी, अरबों ने कहा है बिना पर उस जाब्ते के जो हर्फ निदा का लाम के साथ जमा होने को जायज करार देता है, उस जाब्ते की बिना पर अरबों ने कहा है, भाई वो जाब्ता क्या है, वो भी बयान कर रहे हैं। कहते हैं वही इज्तिमाउ अमरैनी, और ये दो चीजों का जमा होना है, अहदुहुमा कौनुल लामी ईवजन अन महजूफिन, एक तो ये कि वो लाम ईवज हो महजूफ से, वसानी ही मा लुजूमू हालिल कलिमती, और दूसरी चीज यह है कि वो लाम कलिमे के साथ लाजिम हो। तो इसी बिना पर अरबों ने कहा है या अल्लाह, यानी या को जमा किया अलिफ लाम के साथ, लिअन्ना असलहू अल इलाहू, इसलिए क्योंकि लफ्ज अल्लाह की असल क्या थी, अल इलाह थी, क्या थी, अल इलाह। फहुजिफतिल हमजा, तो फिर इस हमजा को हजफ कर लिया गया, व उविजतिल लाम अनहा, और लाम को इसका इवज बना दिया गया, व लजिमतिल कलिमता, और ये अलिफ लाम क्या हुआ, कलिमा के साथ लाजिम हो गया। फला युकालु फी साअतिल कलामी लाहुन, लिहाजा आम कलाम अरब के अंदर लाहुन नहीं कहा जाता, अब उससे जुदा नहीं होता, यह कलिमा के साथ लाजिम हो गया। तवज्जो है, साअतुल कलाम सीन के फतहा के साथ, वसिया यसाउ साअतन, तो ये वुसअत से है, वसीआ यसाउ साअतन, ये वुसअत से है, गुंजाइश होना, और ये आम कलाम को कहते हैं। याद रखो, एक होते हैं अशआर, अशआर, और एक आम कलाम है, ये जो मैं तकरीर कर रहा हूं या ये जो जामी में आपके सामने लिखा हुआ, ये आम कलाम है, और एक होते हैं अशआर। अशआर का अपना एक मखसूस वजन होता है, उस वजन से एक हर्फ इधर उधर हो जाए तो सारा शेर का वजन खराब हो जाता है। तो वहां कलाम में गुंजाइश तंग होती है, अशआर में गुंजाइश कम होती है, यानी आपको खास तरीके पे कलाम लाना पड़ेगा, और आम कलाम में तो आप जिस तरह मर्जी जुमला बोल दें, जो मर्जी कहते रहें, तो वो है, यानी उसमें तज़यीक कलाम है, क्या है, यानी उसमें कलाम में तंगी होती है। वहां पर, वहां शेर को देखो, हर एक आदमी शेर नहीं कह सकता भाई, क्योंकि खास वजन पर कहना पड़ता है, तो वो तज़यीक कलाम है, यानी कलाम में वहां तंगी होती है, और आम जो नसर है उसको साअतुल कलाम कहते हैं, यहां कलाम में गुंजाइश होती है, फराखी होती है। बात समझ में आ गई, तो साअतुल कलाम में यानी आम अरब कलाम के अंदर लाहुन नहीं कहते, अशआर में कभी इस्तेमाल कर लेते हैं भाई, क्योंकि वहां जरूरत होती है, मजबूरी होती है, बहुत सी ऐसी चीजें जो आम कलाम में जायज नहीं होती, अशआर में जायज होती हैं। बात समझ में आ गई, तो साअतुल कलाम किसे कहते हैं, आम अरब कलाम जो नसर हो। तो कहते हैं फला युकालु फी साअतिल कलामी लाहुन, लिहाजा आम कलाम के अंदर यानी नसर के अंदर लाहुन नहीं कहते। वलम्मा लम यजतमी हाजानिल अमरानी फी मौज़िइन आखर, भाई सवाल पैदा होता है, आपने हमें ज़ाब्ता बताया कि हर्फ निदा अलिफ लाम के साथ जमा हो सकता है, कितनी चीजें होनी चाहिए, दो, एक तो अलिफ लाम इवज होना चाहिए महजूफ का, और दूसरा वो अलिफ लाम कलिमे के साथ लाजिम हो जाए। ये आपने हमें कानून बताया, और कानून तो कुल्ली होता है, जहां भी ऐसा होगा वहां या और अलिफ लाम जमा हो सकते हैं। तो फिर ये आपने आगे ये क्यों कहा कि अरबों ने या अल्लाह कहा है खास सतन, खास तौर पर, ये तो कुल्ली कानून आपने हमें बता दिया ना, जब कुल्ली कानून है तो जहां कहीं भी ये दो शर्तें पूरी होंगी वहां या और अलिफ लाम जमा हो सकते हैं। तो फिर ये कहने का क्या माना कि अरबों ने या अल्लाह कहा है खास तौर पर, खास तौर पर क्या माना, आप मसलन कहते हैं अल्फाइल मरफून, फाइल क्या है, तो जहां दुनिया में फाइल आएगा आप उस पर रफा पढ़ेंगे, कुल्ली कानून है, तो कानून तो कुल्ली होता है, जहां जहां भी वैसा होगा वहां उसी तरह पढ़ेंगे। तो जब आपने कानून बना दिया तो फिर खास सतन कहने का क्या माना कि लफ्ज अल्लाह के साथ ये खास है, तो आपको बताएंगे कि कानून तो यही है लेकिन लफ्ज अल्लाह के अलावा और कहीं पर ये दो चीजें पाई ही नहीं जाती भाई, कि वो अलिफ लाम महजूफ का इवज भी हो और कलिमे के साथ लाजिम भी हो। कानून तो हमारा कुल्ली है लेकिन और कहीं ये चीज पाई ही नहीं जाती, तो इसलिए मालूम हुआ सिर्फ लफ्ज अल्लाह ही की ये खसूसियत है कि इसमें हर्फ निदा अलिफ लाम के साथ जमा हो सकता है। बात समझ में आ गई, तो कहते हैं वलम्मा लम यजतमि हाजानिल अमरानी फी मौज़िइन आखरा, और जब ये दोनों चीजें जमा नहीं होती किसी दूसरी जगह पर, तो उख्तुस्सा हाज़ल इस्मु बिज़ालिकल जवाज़ी, तो खास हुआ ये वाला इसम, यानी ये इसम लफ्ज अल्लाह जो है ये खास हो गया, बिज़ालिकल जवाज़ी, इस जवाज के साथ, यानी ये सिर्फ किसमें जायज है, लफ्ज अल्लाह में। वलिहाजा काला खासतन, इसीलिए मुसन्निफ ने क्या फरमाया, खासतन फरमाया, कि या अल्लाह, अरबों ने कहा है खास तौर पर, याद रखना यह खासतन मफूले मुतलक है। अय खुस्सा खासतन, खुस्सा फेल और खासतन यह मस्तर है, तो यह मफूले मुतलक है, इसको खास किया गया है इस लफ्ज को भाई। तो यह खासतन मस्तर है भाई, तो खुस्सा खासतन, तो यह मफूले मुतलक है फिल महजूफ के लिए। आगे देखिए, कहते हैं वह अम्मा मिसलुन नजमी व साइकी व इन काना। जी मैंने आपको गुजश्ता सबक में बतलाया था कि नजम अरबी जुबान में सितारे को कहते हैं, लेकिन अन नजम अलिफ लाम के साथ यह नाम रखा गया सितारों के एक मजमूए का, जिसको उर्दू में सुरैया और परवीन कहते हैं भाई। तो अब यह अलिफ लाम के साथ नाम बन गया, तो यह अब अलिफ लाम इससे जुदा नहीं हो सकता। मालूम हुआ यह अलिफ लाम कलिमे के साथ लाजिम है। इसी तरह अस-साइक, साइक सिफत मुशब्बा है, इसका माना बेहोश। लेकिन अरब में एक शख्स था खुवैलिद इब्ने नुफैल अल-किलाबी, और उस पर आसमानी बिजली गिरी थी या बनू तमीम वालों ने कोई जर वगैरह लगाई थी, उसके बाद जब कोई खौफनाक आवाज आती तो वो हवास बाख्ता हो जाता और बेहोश हो जाता, तो उसका नाम ही क्या पड़ गया, अस-साइक अलिफ लाम के साथ, अलिफ लाम के साथ। तो अब देखो अन नजम के साथ भी अब अलिफ लाम लाजिम है, जुदा नहीं होता। अस-साइक के साथ भी अलिफ लाम लाजिम है, इसे जुदा नहीं होता। तो साहिब जामी आपको बताएंगे कि हां एक बात तो इसमें पूरी है, जाब्ते में दो चीजें थी कि अलिफ लाम इवज भी होना चाहिए और दूसरा कलिमे के साथ लाजिम। यह कलिमे के साथ लाजिम तो है अन नजम और अस-साइक में अलिफ लाम, लेकिन यह किसी का इवज नहीं, लिहाजा इनमें भी अलिफ लाम पर या हरफ निदा को बराह रास्त दाखिल नहीं कर सकते। तो कहते हैं वह अम्मा मिसलु नजमी व साइकी, तो कहते हैं बाकी अन नजम और साइक जो है वह इनकानती लाम लाजिमतन फी, अगरचे इनके अंदर लाम लाजिम है, लाकिन लैसत इवजन अन महजूफिन, लेकिन यह लाम महजूफ का इवज नहीं है। वह अम्मन नास, जी अन्नास याद रखो, याद रखो अन्नास असल में था उनासुन, उनासुन आम लोगों को कहते हैं, लोग भाई लोग, उनासुन फिर अलिफ्लाम इस पर दाखिल किया अल उनास, फिर हमजा को हजफ किया और अलिफ्लाम को उसका इवज बना दिया, तो क्या बन गया अन्नास, अन्नास। तो ये अलिफ्लाम हमजा का इवज है, लेकिन याद रखो ये अलिफ्लाम कलिमे के साथ लाजिम नहीं है। आम नसर कलाम के अंदर भी कभी अलिफ्लाम के बगैर सिर्फ नासुन कह देते हैं, तवज्जो है। तो अलिफ्लाम इवज तो हुआ लेकिन कलिमे के साथ लाजिम नहीं, लिहाजा इसके अंदर भी हर्फ निदा को अन्नास पर दाखिल नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों शर्तें पूरी नहीं हैं। तो कहते हैं वह अमन नासु, और बाकी अन्नास जो है वह इन कानती लाम उफी इवजन अनिल हमजती, अगरचे इसके अंदर लाम जो है वह हमजा का इवज है, ले अन्न असलहुल उन्नासु, इसलिए क्योंकि इसकी असल क्या है अल उन्नास है, लाकिन लैसत लाजिमतन लिल कलिमती, लेकिन यह अलिफ्लाम कलिमा के साथ लाजिम नहीं है, ले अन्नहु युकालु नासुन फी सातिल कलामी, इसलिए क्योंकि नासुन भी कहा जाता है फी सातिल कलामी आम कलाम के अंदर। मालूम अलिफ्लाम इवज तो है लेकिन लाजिम नहीं, जुदा हो जाता है भाई, नासुन कहते हैं आम कलाम में। फला यजूज अन युकाला, लिहाजा यह जायज नहीं है कि यूं कहा जाए यन नजमु व यन नासु, इस पर या को अलिफ्लाम के साथ जमा करना जायज नहीं, क्योंकि दोनों शर्तें पूरी नहीं, जाब्ते की दोनों शर्तें इनमें पूरी नहीं। वली आदमी जराया निहाद हिल कायदति फिल्लती, जी आगे जरा शेर समझ लें, मिन अजली की, मिन अजली की, यह शायर है अपनी आशिका से खिताब कर रहा है शेर के अंदर, मिन अजली की तेरी वजह से, यल्लती तयमत कल्बी, तयमा तयमा युतयमु का माना है किसी को गुलाम बनाना, किसी को अपना दीवाना बनाना। तर्जमा सुने, मिन अजली की तेरी वजह से, यानी तेरी वजह से मैं ये तकलीफों और मुसीबतों में गिरफ्तार हूं और मुश्किलात बर्दाश्त कर रहा हूं। यल्लती ए वो जो के, ये अल्लती इसमें मौसूल है, तवज्जो है, ए वो जो के तयमत कल्बी, जिसने दीवाना बना दिया है कल्बी मेरे दिल को, ए आशिका जिसने मेरे दिल को अपना दीवाना बना दिया है, तवज्जो है। वह अंति बखीलतुन, और हाल यह है कि तू बुखल करने वाली है, बिल वसल अन्नी, मेरे साथ वसल से, मेरे साथ मिलने से। ए आशिका, तेरी वजह से मैं इतनी तकलीफें उठा रहा हूं, वजह यह है कि तूने मुझे अपना गुलाम बना लिया है, तूने मुझे अपना दीवाना बना लिया है। तो तूने मुझे अपना दीवाना बना लिया है, तूने मुझे अपना गुलाम बना लिया है, और तेरी वजह से मैं ये सारी तकलीफें और आजमाइशें जो मुझ पर आ रही हैं वो मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, हालांकि तू मेरे साथ मुलाकात में बुखल करती है, तू मुझसे मिलती नहीं है। बात समझ में आ गई? सारी तकलीफें तेरी वजह से हैं और तेरा हाल यह है कि मुझसे मिलती ही नहीं है। तर्जमा समझ में आया? फिर सुनो, मीन अजली की, तेरी वजह से, यह महजूफ के साथ मुतालिक हो जाएगा, यानी तेरी वजह से मुझ पर यह मुसीबतें हैं। यल्लती, ए मेरी वो आशिका, तयमत कल्बी, जिसने दीवाना कर दिया है मेरे दिल को, वह अंति बखीलतुन बिल वसल अन्नी, और हाल यह है कि तू बुखल करने वाली है, बिल वसल अन्नी, मेरे साथ वसल और मुलाकात में। तर्जमा समझ में आ गया? अब देखो, याद रखो, यहां ये अल्लती इसमें मौसूल है, तवज्जो है, अल्लती इसमें मौसूल, और तयमत कल्बी ये उसका सिला, तयमत कल्बी उसका सिला है, और मौसूल सिले में रब तो होता है, लिहाजा तयमत पढ़े, तयमत ये मुअन्नस का सीगा हुआ, मुअन्नस गायब का, और इसके अंदर हिया जमीर, और ये अल्लती को राजे है, ये रबत दे रहा है, तवज्जो है, जबकि आम किताबों में लिखा है अल्लती तयमती, इसको किस तरह पढ़ा जाए, तयम तयमती भी पढ़े, बिल्कुल ठीक है माना के एतबार से। यल्लती, ए मेरी वो आशिका, तयमती, तूने गुलाम बनाया है कल्बी, किसको, तवज्जो है, और फिर भाई अल्लती इसमें मौसूल है मुअन्नस का, और रबत भी तो चाहिए, और मैंने आपको बताया था मर्जे सिर्फ गायब की जमीर का होता है, मुखातब और मुतकलम की जमीर का मर्जे, तो ये अल्लती इसमें मौसूल है, और तयमती कल्बी इसका सिला है, और इसके अंदर तो जब तयमती पढ़े, तयमती के अंदर ये ता जमीर वाहिद मुअन्नस मुखातबा की है, ये इसमें ये तो मुखातब की जमीर है, और मर्जे तो मुखातब की जमीर का नहीं होता, तो फिर रबत क्या है, तो याद रखो रबत यही ता है, तयमती की ता, भाई किस तरह, कहते हैं इसलिए क्योंकि यल्लती इसमें मौसूल है, और इसमें मौसूल गायब के दर्जे में होता है, लेकिन यहां वो इसको खिताब कर रहा है, क्या कर रहा है, खिताब कर रहा है अपनी आशिका को, तो अल्लती से वही मुखातबा आशिका मुराद है, और तयमती की ता से भी कौन मुराद है, वही आशिका मुराद है, तो रबत आ गया भाई, बात समझ में आ गई, तो यह माना के एतबार से रबत आ गया, बात समझ में आ गई। अब भाई बहस चल रही थी कि यहां यल्लती आया, अल्लती इसमें मौसूल है, इस पर अलिफ लाम है, और इस पर या दाखिल है हरफे निदा, हालांकि या और अलिफ लाम तो जमा नहीं हो सकते, तवज्जो है, तो आपको साहिब जामी बतलाएंगे कि इस शेर के अंदर या हरफे निदा अलिफ लाम के साथ जमा है, हां ये अलिफ लाम अल्लती के साथ लाजिम है, इससे जुदा नहीं होता, लेकिन यह किसी का इवज नहीं है, तो लिहाजा एक शर्त तो पूरी है, दूसरी शर्त पूरी नहीं, लिहाजा ये जो या को अल्लती पर दाखिल किया गया बगैर शर्तों के पूरा किए हुए, ये शाज है, ये क्या है, शाज है, बात समझ में आ गई। अब देखिए तर्जमा, कहते हैं वली आदमी जरायान हादिहिल कायदती फी अल्लती, और इस वजह से कि ये कायदा और ये कानून जारी नहीं होता, फी अल्लती किसके अंदर, अल्लती, यहां पर भी अल्लती का हमजा कतई बन चुका है, क्योंकि अल्लती से लफ्ज अल्लती मुराद है, वैसे अल्लती का हमजा वसली है, दरमियाने इबारत में गिर जाता है, यूं पढ़ना चाहिए फी अल्लती, लेकिन यहां नहीं गिरेगा, बल्कि कैसे पढ़ेंगे, फी अल्लती, कहते हैं वली आदमी जरायान हादिहिल कायदती फी अल्लती, और अल्लती के अंदर इस कायदे के जारी न होने की वजह से, फी कौली ही शायर के इस कौल में, मिन अजली की यल्लती तयमती कल्बी व अंति बखीलतुम बिल वसल अन्नी, ये कायदा इस अल्लती में जारी नहीं होता, क्यों, लिअन्ना लामहा लैसत इवजन अन महजूफिन, क्योंकि इसका लाम जो है वो महजूफ का इवज नहीं है, वह इन कानत लाजिमतन लिल कलिमती, अगरचे वो कलिमा के साथ लाजिम है, एक शर्त पूरी है दूसरी शर्त पूरी नहीं, तो इस वजह से हकमु अलैहि बिशुजूजी, उलमाए नहम ने हुक्म लगाया है इस पर शाज होने का, इस पर शाज होने का हुक्म लगाया है। वफिल गुलामानी फी कौलिहिम, आगे एक और मिसरा देखिए, फयल गुलामानी लदानी फर्रा, अल गुलामान, ये गुलाम की तस्निया है और इस पर अलिफ लाम आया और फिर इस पर या भी दाखिल की गई। शायर क्या कहता है, शायर के कोई गुलाम भाग गए थे, दो गुलाम या एक गुलाम और एक बांदी भाग गए थे, तो शायर अब उनको कहता है फयल गुलामान लदानी फर्रा, बस ए वो दो गुलामों जो भाग गए हो। फर्रा या फिर्रू का क्या माना है, भागना, ये तस्निया का सीगा है। फर्रा फयल गुलामान लदानी फर्रा, बस ए वो दो गुलामों जो भाग गए हो। दूसरा मिसरा बाजों ने जिक्र किया इया कुमा अंतक सिबा शर्रा, तुम अपने आप को इस बात से बचाओ कि शर कमाओ, के शर कमाओ। फयल गुलामान, तो इसमें देखो अल गुलामानी पर अलिफ्लाम दाखिल है और ये अलिफ्लाम कलीमे के साथ लाजिम भी नहीं, ये उससे जुदा हो जाता है, गुलामानी आम इस्तेमाल होता है, और नीज ये किसी का इवज भी नहीं है, तो इसमें तो दोनों शर्तों में से एक भी पूरी नहीं है, फिर भी इस पर या दाखिल किया गया। तो साहिब जामिया आपको बतलाएंगे कि ये तो पहले वाले शाज से भी बढ़कर शाज है, क्योंकि पहले वाले में यल लती में एक शर्त तो पूरी थी कि अलिफ्लाम कलिमे के साथ लाजिम था अगरचे इवज नहीं था, और यहां ना तो इवज है और ना लाजिम है, तो ये तो उससे भी बढ़कर शाज है भाई। तो कहते हैं वफी अल गुलामानी फी कौलिहिम, और अल गुलामानी के अंदर इस कौल के अंदर अरबों के फयल गुलामानी लदानी फर्रा, पस ए वो दो गुलामों जो भाग गए हो, इसके अंदर लिंतिफा इल अमरैन किलैहिमा, इस वजह से कि दोनों अमर मुंतफी हैं, हकमु उन्होंने हुक्म लगाया है इस पर बि अन्नहु अशज्जु शुजूजन, कि ये ज्यादा शाज है उस पहले वाले के भी मुकाबले में। तवज्जो है बि अन्नहु अशज्जु शुजूजन, ये उससे भी ज्यादा शाज है कि उसमें एक शर्त तो पूरी थी, इसमें तो दोनों ही शर्तें पूरी नहीं, फिर भी या को इस पर दाखिल कर दिया गया। जबकि बाज उलमा ने लिखा कि ये अशज्जु नहीं है, ये अशद्दु है, ये क्या है, अशद्दु शुजूजन। याद रखो ये इसमें तफजील जो है ना, ये इसमें तफजील, ये सुलासी मुजर्रद से सिर्फ आता है और सुलासी मुजर्रद में भी जिसमें ऐब और रंग वाला माना हो उससे नहीं आता। सुलासी मुजर्रद जिसमें ऐब और रंग वाला माना हो उससे अफालु तफसील नहीं आता। तवज्जो है, मसलन अहमक, अब अहमक देखो ये ऐब है ना, ऐब वाला, या इसी तरह आवर, क्योंकि ये जिसमें रंग या ऐब वाला माना हो उससे अफाल वजन सिफत मुशब्बा आती है, जिसको अफालु सिफ्ती कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अफालु सिफ्ती। देखो आवर, आवर का माना काना, जिसकी एक आंख ना हो, अब ये वजन वही अफाल है लेकिन ये इस अफालु तफजील नहीं है बल्कि ये सिफत मुशब्बा। इसी तरह रंग हो अबयज, देखो ये भी अफाल वजन है लेकिन ये अफालु सिफ्ती है, सिफत मुशब्बा है, इसमें तफजील नहीं। तो अफालु तफजील सिर्फ सुलासी मुजर्रद से आता है और सुलासी मुजर्रद में भी सिर्फ उन बाबों से आता है जिनमें रंग और ऐब वाला माना ना हो। तवज्जो है, और अगर इनसे फिर इसमें तफजील बनाना हो या सुलासी मजीद से इसमें तफजील बनाना हो तो फिर अशद्दु अक्सरु अकवा वगैरह जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और आगे उसी का मस्तर ले आते हैं उस बाब का। मसलन मैं कहना चाहता हूं जैद अमर से बढ़कर इकराम करने वाला है, जैद अमर से बढ़कर इकराम करने वाला है, तो अकरम युक्रिमु इकरामन, ये तो सुलासी मजीद फी में से है और सुलासी मजीद फी में तो अफालु तफजील नहीं आता, लेकिन मैं अफालु तफजील लाना चाहता हूं, इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो फिर मैं क्या कहूंगा, मैं अशद्दु अक्सरु अकवा जैसा लफ्ज लाऊंगा, जैदुन अक्सरु इकरामन, आगे वही मस्तर ले आऊंगा मनसूब, जैदुन अक्सरु इकरामन मिन आमरीन, जैद ज्यादा है बेतबार इकराम करने के आमर के मुकाबले में। तवज्जो है, तो लिहाजा यहां पर भी कहते हैं ये असल में है अशद्दु शुजूजन, क्योंकि शाज होना ऐब है, शाज होना ऐब है, और जब ऐब है तो इसे अफलु तफसील नहीं आता, इसे अफलु सिफ्ती आता है, तो फिर लिहाजा अशद्दु ले आए कि ये जो यल गुलामानी में अल गुलामान पर या को दाखिल किया गया अशद्दु, ये ज्यादा शदीद है शुजूजन बैतबार शाज होने के मस्तर ले आए, ये ज्यादा शदीद है बैतबार शाज होने के यल्लती के मुकाबले में। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुअल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।